हरे कृष्ण गोविंद लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। लेक्चर स्टार्ट होने वाला दो मिनट तक आप आ जाइए।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सच्ची सुतास्तकम का उच्चारण करेंगे, पेज नंबर 238, 238। तो तीन चार डिवोटीज एक बुक में देख सकते हैं। नव गौरवराम नव पुष्पशराम नव भावधराम नव लाशपराम नव गौरवराम नव पुष्पशराम नव भावधराम नव पुष्पशराम नव भावधराम नव लाशपराम नव गौरवराम नव पुष्पशराम नव भावधराम नव लाशपराम नव हेमवराम नव प्रणमामि सचेसुत गौरवराम नव प्रेमजुतं नव नीतसुचं नव वेशकृतं नव प्रेमरसाम शुभ प्रेममया प्रणमामि सचेसुत गौरवराम प्रणमामि सचेसुत गौरवराम हरि भक्ति परम हरे नाम दराम कर जाप्य करम हरे नाम परम
हरि भक्ति परम हरे नाम दराम कर जाप्य करम हरे नाम परम
हरे भक्ति परम हरे नाम दराम कर जाप्य करम हरे नाम परम
हरे भक्ति परम हरे नाम धरम कर जाप्य सततं प्रणाम्य सुतरं प्रणामामि सचेतुत गौरवनाय नयने सततं प्रणाम्य सुतरं प्रणामामि सचेतुत गौरवनाय भवता परं परमार्थ परायण लोकगते सततं जनता भवता परं परमार्थ परायण लोकगते जगतापहरं प्रणामामि सचेतुत गौरवनाय नवलेहकरं जगतापहरं प्रणामामि सचेतुत गौरवनाय निजभक्तिकरं प्रिय चारुतरं निजभक्तिकरं निजभक्तिकरं प्रिय चारुतरं नट नर्तन नागर राजकुला नट नर्तन नागर राजकुला कुलकामिनी मानस लाशकरा मानस लाशकरा प्रणमामि सचेतुत गौरवनाय प्रणमामि सचेतुत गौरवनाय करतालबलं कल कण्ठरवं मृदुवाद्य सुवेनिकया मधुरं करतालबलं कल कण्ठरवं मृदुवाद्य सुवेनिकया मधुरं भक्ति गुणावृत नाट्यकरा निज भक्ति गुणावृत नाट्यकरा प्रणमामि सचेतुत गौरवनाय युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणि सुचित्रं भवभावोचितं युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं धरणि सुचित्रं भव धनु ध्यान चितं निज वासयुतं धनु ध्यान चितं निज ప్రణమామి సచేసుత గౌరవరా ప్రణమామి సచేసుత గౌరవరా అరుణమయనం చరణం వసనం వదనే స్ఖలితం స్వనామధరాం అరుణమయనం చరణం వసనం అరుణం నయనం చరణం వసనం వదనే స్ఖలితం స్వనామధరాం గురుతే సురసాం జగత జీవనా జగత జీవనా ప్రణమామి సచేసుత గౌరవనా ప్రణమామి సచేసుత గౌరవనా నవ గౌరవరం నవ పుష్పచరం నవ భావధరం రాష్ట్రపరాం నవ గౌరవరాం నవ గౌరవరాం నవ పుష్పశరాం నవ భావధరాం నవ రాష్ట్రపరాం నవ హర్షకరాం నవ హేమవరాం
పతిత పావన్ శ్రీల ప్రభుపాద్ కి నితాయ గౌర ప్రేమనందే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ,
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 ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ.
ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధశ జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురుమిళితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం ఏన భూతలే స్వయం రూపా కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశం శ్రీరూపాం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है शिमला यात्रा में। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, निर्जला एकादशी। जनरली शास्त्र कहते हैं, मथुरा महात्म्य में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि व्यक्ति को निर्जला एकादशी मथुरा में जाकर करना चाहिए। जैसे कि कल इस गोपेश्वर प्रभु कह रहे थे कि शिमला भी क्या बन रहा है या बन गया है, वृंदावन। क्योंकि वृंदावन दो प्रकार से बनता है। एक तो है भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में कहते हैं, जय स्थाने वैष्णव गण सेई स्थान वृंदावन। जहां जहां भगवान कृष्ण के परम भक्त निवास करते हैं, वास करते हैं, वो स्थान वृंदावन से अभिन्न है। क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो धाम को अपने हृदय में लेकर चलते हैं। उनको वॉकिंग तीर्थ या वॉकिंग धाम कहा जाता है। क्योंकि धाम शब्द का कई अर्थ है। श्रील प्रभुपाद भागवतम के एक तात्पर्य में कहते हैं कि धाम का मतलब जहां परम भगवान निवास करते हैं। और दूसरा क्या है कि इस पृथ्वी में भगवान जिस स्थान में आते हैं, जिस स्थान में इस पृथ्वी को टच करते हैं, उस स्थान को भी धाम कहा जाता है। और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनका जो हृदय है, उस हृदय को भी क्या कहा जाता है, धाम कहा जाता है। और धाम क्यों, धाम धाम का मतलब क्या है, और एक धाम का मतलब ये है कि जहां चार चीजें होती हैं, नाम रूप गुण और लीला। ये चार चीजों का अधिक से अधिक मात्रा में गुणगान किया जाता है। भगवान नाम का संकीर्तन, भगवान के गुणों की व्याख्या, उनके रूप माधुरी का दर्शन आदि, या उनकी महिमा का वर्णन और उनकी लीलाओं का अधिक से अधिक मात्रा में वर्णन। तो ये चारों चीजें जिस स्थान में विद्यमान होती हैं, उस स्थान को भी धाम कहा जाता है। तो और दूसरा क्या है धाम, एक तो है भक्त के द्वारा धाम प्रकट होता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जय स्थाने वैष्णव गण से स्थान वृंदावन। और दूसरा क्या है, जहां वृंदा देवी तुलसी महारानी जहां निवास करती हैं, वो स्थान वृंदावन से अभिन्न है। क्योंकि शास्त्र वर्णन करते हैं कि वृंदा देवी या तुलसी महारानी के जड़ में जो मिट्टी है वो ब्रज रज से क्या है, अभिन्न है। इसलिए वैष्णवगण रोज अपने माथे में लगाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें चांटिंग के समय में पूरा इन्वायरमेंट दिया है, धाम प्रदान किया है, वृंदावन का वातावरण दिया है। यदि हम अपने चांटिंग के समय किसका आश्रय लेते हैं, तुलसी महारानी का। और हम सोचते हैं कि मैं अकेले अकेले हरिनाम कर रहा हूं भक्तों के संग के बिना, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट एसोसिएशन हमें प्रदान किया है तुलसी महारानी के रूप में, जो साक्षात कृष्ण की शुद्ध भक्त है और साथ ही साथ वृंदावन का क्या है, वातावरण है, जो वृंदावन का इन्वायरमेंट है, जो हमें चांटिंग के लिए प्रदान करते हैं। तो ये जो शिमला है, मैं वैसे ही सोच रहा था, सी का मतलब है देखना, मला का मतलब हो सकता है मल, लोग आते हैं यहाँ क्या करने। प्रभुपाद कहते हैं कि हम इस भौतिक जगत में स्टूल पास करने के लिए आए हैं, प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं। तो यहां से हमें क्या करना है, बाहर जाना है भौतिक जगत में। तो लोग शिमला में आते हैं वास्तव में क्या करने, मल खाने के लिए और मल त्यागने के लिए। लेकिन भगवान के भक्त आते हैं यहाँ और वो देखते हैं, जैसे प्रभुपाद ने कहा जो भगवान के भक्त हैं, जब नारद छोटे से बालक थे दासी पुत्र, तो उनकी माँ का देहांत हुआ और वो जब जैसे उनके माँ का देहांत हुआ उन्होंने अपनी माँ का जो शरीर झोपड़ी में था उसी को आग लगा दी और वैसे ही अंतिम संस्कार किया उसका और वैसे ही निकल पड़े पूर्ण रूपेण कृष्ण पर निर्भर होते हुए अलग अलग गांवों में, अलग अलग नगरों में, अलग अलग वनों में भ्रमण करते हुए और सारे अलग अलग वन फॉरेस्ट पहाड़ आदि को देखते हुए किसका वो स्मरण कर रहे थे, कृष्ण का। क्योंकि इस जगत में कृष्ण से अलग कोई वस्तु नहीं है, इसलिए शास्त्र कहते हैं जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो जहां जहां देखते हैं वो कृष्ण को ही देखते हैं। हाँ, जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार फ्लाइट से जा रहे थे तो उनका एक जो शिष्य है, हाँ, उनका जो असिस्टेंट था वो बैठा था, तो प्रभुपाद साथ ही शायद कहा फ्लाइट में शायद बाथरूम यूज करने के लिए गए होंगे, तो वो प्रभुपाद जैसे आए पीछे से वो देख रहा था जो एयर होस्टेज है, उसकी ओर देख रहा था काफी देर से, उसकी सुंदरता को देख रहा था। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्य को देखा कि ये उस लेडी को या उस यंग गर्ल को देख रहा है जो बहुत सुंदर है, और जैसे प्रभुपाद आए और प्रभुपाद ने ये देखा तो वो भक्त शर्माया, उन्होंने कहा रे मैं उस लड़की को देख रहा था काफी देर से और अभी मुझे प्रभुपाद ने भी देख लिया है। तो वो शर्मा के नीचे अपना सर झुका रहा था, प्रभुपाद ने कहा शी लुक्स ब्यूटीफुल, उन्होंने कहा वो बहुत सुंदर है। तो वो भक्त को कुछ और ये नहीं था, उसने कहा यस प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने कहा सोचो ये इतनी सुंदर है तो फिर इसको बनाने वाला जो परम भगवान है वो कितने सुंदर है, उनके सौंदर्य की क्या आप तुलना किससे की जा सकती है। तो इस प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं वो सदैव इस जगत में रहते हुए भी उनकी आंखों में कृष्णांजन या प्रेमांजन च रित प्रेमांजन चु रित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्मा कहते हैं कि आपके जो परम भागवत वैष्णव गण है वो सदैव अपने हृदय में श्याम सुंदर कृष्ण का अवलोकन करते हैं, उनको देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में, उन महान भक्तों की आंखों में प्रेम का अंजन लगा होता है और इस प्रेमांजन के कारण वो क्या करते हैं, सब जगह कृष्ण को देखते हैं या कृष्ण को अपने हृदय में भी देखते हैं। तो ये जो प्रेमांजन है या इस भौतिक जगत को देखने का जो दृष्टिकोण है वो हमें कहां से प्राप्त होता है, गुरु और वैष्णवों के माध्यम से। हाँ, ये जो प्रेमांजन है ये कहां अवेलेबल नहीं है, केवल श्री गुरु चरण पद्मा, केवल भक्ति सदमा, श्री गुरु के चरण कमलों में ही ये प्रेमांजन है अंजन। ये किसी फैक्ट्री में, शॉप में या मॉल में नहीं मिलेगा, ये केवल श्री गुरु के चरण कमलों में ये प्रेमांजन है। और आचार्य गण कहते हैं वास्तव में प्रेमांजन का फैक्ट्री के ओनर कोई है तो वो श्री गुरु है। जितना अधिक व्यक्ति श्री गुरु की सेवा में मग्न होता है उतनी ही अधिक मात्रा में उनकी जो उसकी जो आंखें हैं वो क्या होती हैं, इस अंजन से विभूषित होती हैं और उसके द्वारा वो इस जगत को सही दृष्टिकोण से देख पाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति चाहिए तो कौन से चीज से वो आध्यात्मिक बल व्यक्ति के पास आएगा, क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो, कहते कि आप बड़े बड़े विद्वता के द्वारा प्रवचन देने में आप बहुत एक्सपर्ट हो, गाने में बहुत एक्सपर्ट हो, भौतिक बल आपके पास है, यश है, सौंदर्य है, नॉलेज है, इसके द्वारा परम भगवान को आप जान नहीं सकते। उनको कैसे जान सकते हो, यदि परम भगवान स्वयं उसके उस व्यक्ति के ऊपर कृपा करे या डिजायर करे कि हाँ ये व्यक्ति मुझे जान सकता है, या कृष्ण रिवील करे अपने आप को उस व्यक्ति के लिए, तभी वास्तव में हम समझ सकते हैं। तो भगवान को जानने के लिए हमें भौतिक बल की आवश्यकता नहीं है। हाँ, किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक बल चाहिए भगवान को जानने के लिए, और आध्यात्मिक बल केवल दो ही चीजों से प्राप्त होता है। क्या है वो दो चीजें? शास्त्र कहते हैं नाम सेवा और गुरु सेवा। ये दो ही चीजों के द्वारा वास्तव में व्यक्ति जो शिष्य है या भगवत भक्त है इतना बलशाली हो जाता है, हाँ, कि ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का पार्षद हो जाता है या चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी की क्वालिफिकेशन उस सर्व सामान्य शिष्य या भक्त के हृदय में आता है यदि वो केवल अपने जीवन में इन दो चीजों की सेवा में रत रहता है, नाम सेवा और गुरु सेवा, जिसके द्वारा उसको आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इन दो चीजों की स्थापना अपने आचरण से की। और जितने भी आचार्यों का हम चरित्र आदि देखते हैं उन सारे आचार्यों के जीवन में ये जो दो प्रिंसिपल हैं, एक है नाम सेवा और दूसरा है गुरु सेवा, ये प्रमुख रूप से हमें प्राप्त होता है या देखने को मिलता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस नाम की सेवा की अपने आचरण से, और इस नाम को वो स्वयं ले आए। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, गोलोक एरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन, कि गोलक वृंदावन से चैतन्य महाप्रभु इस हरि नाम रूपी धन को अपने साथ ले आए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं कि कृष्ण के भंडार में कृष्ण का जो ट्रेजरी है उसमें सबसे मूल्यवान वस्तु कृष्ण के पास कोई है तो वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, लाउडली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण के पास भी सर्वोत्कृष्ट दान, सर्वोत्कृष्ट जो संपत्ति है, हाँ, वो हरि नाम से बढ़कर नहीं है। इसलिए कृष्ण उसको क्या करते हैं, चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में वर्णन आता है कि कृष्ण ने तो इस अपने भंडार, इस ट्रेजर हाउस को क्लोज लॉक करके रखा था, लेकिन वही कृष्ण जब बहुत अधिक उदार हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं, महावदान्याय हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में, और उस लॉक्स को क्या करते हैं, तोड़ते हैं और दरवाजों को खोलते हैं और उदार रूप से इसका वितरण करते हैं। आनिया प्रेमेरा वन्या चौधी के बेड़ा, किस प्रेम की बाढ़ को वो लाते हैं और चारों दिशाओं में सब जगह इस हरिनाम रूपी महाधन या हरिनाम रूपी जो प्रेम धन है इसका वितरण करते। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, हरिनाम कृष्ण नाम बड़ा ही मधुर, कि ये जो हरिनाम जो चैतन्य महाप्रभु ने लाया, ये चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इसको क्या किया है, आस्वादन किया है, और चैतन्य महाप्रभु ने आस्वादन करके इसकी मिठास को और बढ़ाया है। जैसे हम श्रीमद् भागवतम के बारे में सुनते हैं कि शुकदेव गोस्वामी, भागवतम वैसे ही मिठास है, लेकिन शुकदेव गोस्वामी के मुख से ये श्रीमद् भागवतम निकलता है तो क्या हो जाता है, उसकी मिठास और बढ़ती है। हाँ, जैसे मैंगोज है, उस मैंगो को यदि शुक तोता चखता है और उसी उसने थोड़ा सा खाया हुआ उस मैंगो को आप खाते हो तो आप अनुभव करोगे कि सबसे अधिक स्वादिष्ट होता है। हाँ, मुझे याद है बचपन में हम विलेज में बहुत सारे मैंगो ट्रीज होते थे तो एक एक मैंगो ट्री में एक एक ट्रक मैंगो निकलेंगे, इतने मैंगोज आते हैं। तो हम हमेशा देखते थे जो ऊपर मैंगो लटकते थे कि कौन सा मैंगो है जो खाया हुआ है तोते ने, तो फिर उसी को ही पत्थर से उसको गिराते थे या फिर चढ़ के उसको निकालते थे। तो लेकिन मुझे पता नहीं था कि शुकदेव गोस्वामी आगे चलकर कि आप भागवतम भी वैसे ही है। हाँ, लेकिन ये तो जनरल कॉमन सेंस है विलेज में कि हाँ वो बहुत अधिक स्वीट होता है। तो उसी प्रकार से जीव गोस्वामी लघु भागवतामृत में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु मुखोद गिरना, उनके मुख से ये निकला हुआ ज्वालामुखी है हरिनाम संकीर्तन, जो उन्होंने स्वयं आस्वादन किया है और इतना अधिक मिठास है, और फिर उन्होंने उसी मिठास को सारे जगत में व्यापित किया है या वितरण किया है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, हरि नाम कृष्ण नाम बड़ा ही मधुर, कि हरि नाम कृष्ण नाम ये बहुत अधिक मधुर है। लेकिन सुबह से तो मुझे तो पर्सनली मधुर नहीं लग रहा था 3 बजे तक, हाँ बहुत डिफरेंट इससे गुजर रहे थे, क्या कहते हैं फेस से हम गुजर रहे थे। हरे नाम कृष्ण नाम बड़ा ही मधुर, जय जन बजे कृष्ण से बड़ा चतुर। और जो वो एक व्यक्ति जो हरे नाम के माध्यम से कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण को सर्व करता है, उससे चतुर व्यक्ति इस संसार में नहीं है। इसलिए शास्त्र ये चीज पर जोर देते हैं। और वास्तव में देखा जाए आध्यात्मिक जीवन का बैकबोन, जैसे हमारा बैकबोन क्या, मन का ना बैकबोन, को रेड़ की हड्डी यदि हमारे ठीक नहीं है तो हम ना ठीक से बैठ सकते हैं ना चल सकते हैं, हमेशा कष्ट में रहेंगे। तो वही वास्तव में आध्यात्मिक जीवन की जो रेड़ की हड्डी है वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है कि जिस व्यक्ति ने कृष्ण नाम को अपनी निधि बनाया है, अपना एकमेव धन बनाया है, वही व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक जीवन को सही रूप से समझ रहा है या समझने का योग्य होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में कहा है, ऑफ ऑल द रेगुलेटिव प्रिंसिपल द स्पिरिचुअल मास्टर्स ऑर्डर टू चैंट एट लीस्ट 16 राउंड्स इज मोस्ट एसेंशियल। कि सारे जो गुरु के द्वारा दिए गए जो विधि विधान है उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण कोई है या कई आज्ञा आध्यात्मिक गुरु हमें प्रदान करते हैं, लेकिन वास्तव में दीक्षा के समय सर्वप्रथम आज्ञा हमें कोई मिली है तो वो क्या है, हरि नाम का उच्चारण करना। 16 मालाओं का जब श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि 16 मालाओं का जब करना ये सर्व सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने जीवन से इसको सिखाया है। चैतन्य महाप्रभु ने जब दीक्षा प्राप्त की केशव ने ईश्वरपुरी के द्वारा गया में, तो उनके आध्यात्मिक गुरु ने भी उनको कृष्ण नाम प्रदान किया था। और फिर जब उन्होंने उस नाम को स्वीकार किया और उस हरि नाम करने लगे निरंतर, और उस हरि नाम करते करते उनके हृदय में विचलन होना शुरू हुआ। वास्तव में आध्यात्मिक गुरु सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि किसी शिष्य का मति, शिष्य का जो आकर्षण है भगवान के नाम रूप गुण लीला आदियों के प्रति बढ़ रहा है, तो उससे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनका हृदय आनंद से भर जाता है। और इसी चीज को चैतन्य महाप्रभु गए अपने आध्यात्मिक गुरु के पास और उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। हे गुरुदेव, हे गोसाई, हे वैष्णव ठाकुर, आपने कौन सा मंत्र मुझे प्रदान किया है कि इसका उच्चारण करते रहने से करने मात्र से क्या हो रहा हूं मैं, और अधिक पागल हो रहा हूं। हाँ, किसके लिए पागल हो रहा हूं, कृष्ण के लिए। तो उनके गुरु ने कहा यही ये हरि नाम उच्चारण करने का यही एकमेव फल है कि आप कृष्ण के लिए क्या हो जाओ, हाँ पागल हो उठो। हसाय नाचाय मोरे कराय क्रंदन, महाप्रभु ने कहा कि यह हरि नाम क्या कर रहा है मुझे, कभी हंसाता है कभी नचाता है कभी रुलाता है, हाँ कभी मूर्छा को प्राप्त कराता है। तो उनके आध्यात्मिक गुरु चैतन्य महाप्रभु के मुख को देखकर बहुत अधिक आनंद का अनुभूति करने लगे कि वास्तव में यही एकमेव फल है इस हरि नाम का, और तुम्हारा जीवन वास्तव में क्या हो गया है, फलीभूत हो गया है, तुमने आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त किया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि आध्यात्मिक जीवन में 99% जो उन्नति है वह हम हरि नाम के माध्यम से करते हैं। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अटेंटिवली सावधानी पूर्वक इस हरि नाम का उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह हरि नाम साक्षात कृष्ण हमारे हाथ में है, हमारे जीवा के द्वारा हम उच्चारण कर रहे हैं। और जितना अधिक हम भगवान के जो पवित्र नाम है उनके प्रति अटेंटिव होते हैं या सावधान होते हैं, एकाग्र होते हैं, उतने ही मात्रा में कृष्ण हमसे आदान प्रदान करते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वहा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारदा, मैं तो ना वैकुंठ में निवास करता हूं और ना योगी लोग हजारों हजारों सालों के लिए अपने हृदय में मुझे पकड़ने का प्रयास करते हैं। ध्यानावस्थित गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, अपने ध्यान के द्वारा पश्यन्ति वो देखना चाहते हैं मुझे अपने हृदय में, फिर भी मैं उनके हृदय में नहीं हूं। यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहां जहां मेरे भक्त इस नाम का उच्चारण करते हैं वहां वहां मैं क्या करता हूं, निवास करता हूं। तत्र तिष्ठा में, तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि संसार के चाहे किसी भी कोने में हम क्यों ना हो, जहां कृष्ण नाम का उच्चारण हो रहा है वहां साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण वहां उपस्थित है। और जहां कृष्ण है तो उनके सारे जो पैराफेनेलिया है वो उनके साथ है। तो जहां कृष्ण है वो स्थान क्या है, धाम है, वृंदावन है, उससे अभिन्न है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जहां जहां भी गए उन्होंने नव वृंदावन, नव न्यू द्वारका, न्यू मायापुर, सारे जितने भी उनके टेम्पल्स है वो वास्तव में वृंदावन से अभिन्न है। इसलिए कृष्ण बहुत अधिक लालायित रहते हैं, कृष्ण वेट करते हैं कि जो जीव है कब उसकी जीवा के द्वारा मेरे नाम को वाइब्रेट करेगा, कब वो उच्चारण करेगा। कृष्ण सुनने के लिए पागल हो जाते हैं, अपने दाम को छोड़कर आते हैं। आदि पुराण में अर्जुन को कहते कि हे अर्जुन, कोई व्यक्ति सोते सोते भी मेरा नाम उच्चारण करता है फिर भी मैं आकर क्या करता हूं, उसके पास बैठकर सुनता हूं। तो हमें कितना कॉन्शियस होना चाहिए, वो तो शुद्ध भक्त के लिए है, लेकिन फिर भी हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए आध्यात्मिक जीवन में सावधान होना या कॉन्शियस होना सबसे अत्यावश्यक है। कॉन्शियस हुए बिना हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो सकते। हाँ, तो इसलिए हम इस श्लोक से समझ सकते हैं कि भगवान स्वयं अर्जुन को आदि पुराण में कहते कि कोई लेटे लेटे मेरा नाम लेता है तो मैं उसके पास बैठकर सुनता हूं। नाम के रूप में तो स्वयं कृष्ण है ही, लेकिन और भी क्या है, वो स्वयं अपने स्वयं रूप में भी वहां है। और वो कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई व्यक्ति बैठकर सीधा बैठकर मेरा नाम का उच्चारण करता है तो मैं क्या करता हूं, खड़ा होकर सुनता हूं। तो हम कितने सावधान होते, जैसे कोई वर्क हमें दिया जाता है तो कोई सीनियर हमारे पास खड़ा होकर देख रहा है तो हम कितने अटेंटिव होते हैं, है कि नहीं। या स्कूल्स में भी टीचर खड़ा है तो साथ में हम बहुत सावधान होकर अपने सारे कार्य करते हैं। तो हरे नाम का हम उच्चारण करते हैं तो उस समय हमें यह भी सोचना चाहिए कि साक्षात कृष्ण क्या कर रहे हैं, मुझे सही वर्ड है वॉच कर रहे हैं, मेरा निरीक्षण कर रहे हैं। तो फिर हम इनअटेंटिव नहीं हो सकते, फिर हमें सोचना होगा अरे कृष्ण मुझे ध्यान दे रहे हैं तो मुझे कितना सावधान होना होगा उनके नामों का उच्चारण करने के लिए एवं उनकी सेवाओं के लिए। तो फिर भगवान और आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति मेरे नामों का उच्चारण करता है खड़े होकर तो मैं क्या करता हूं, गदगद हो जाता हूं और नाचने लगता हूं। तो अब सोचो। और कोई व्यक्ति फिर आगे वो आखिरी लाइन में कहते हैं कि कोई व्यक्ति जब मेरे नामों का उच्चारण करते हुए नाचता है गाता है तो मैं आंसू बहाने लगता हूं और उस व्यक्ति का आलिंगन करता हूं और उसको कहां ले जाता हूं, आध्यात्मिक जगत में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्णा बहुत अधिक दयालु है, कृष्ण बहुत अधिक लालायित है, वो चाहते हैं कि हम क्या करें, उनकी सेवा करें इस नाम के माध्यम से, उनके नामों को ग्रहण करने के द्वारा हम उनकी सेवा में यदि रत होते हैं। नाम चिंता मनि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह कि ये जो नाम है साक्षात कृष्ण है, सारे रसों का आगार है, अभिन्नत्वात् नाम नामिनः, कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण से अलग नहीं है। इसलिए कृष्ण भावना को गंभीरता से लेने का मतलब है कि हरि नाम को गंभीरता से लेना। कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति को सीरियसली ले रहा है, इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति ने किस एस्पेक्ट को सीरियसली लेना चाहिए? हरि नाम को। क्योंकि हरि नाम को वो सीरियसली लेता है तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नामे प्रस्फुटित है रूप गुण लीला, कि नाम में ये चारों चीजें विद्यमान है। हरिनाम चिंतन मनी में वो कहते हैं कि नाम में क्या है, रूप गुण लीला आदि सारी चीजें हैं, सारी योग्यता है। हम चाहे जितने मर्जी नीच अयोग्य क्यों ना हो, लेकिन हम यदि गंभीरता से हरिनाम को लेते हैं गुरु और वैष्णव की सहायता से, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, एकाकी आमार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करे श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। क्योंकि हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि इस हरि नाम को हम ले सके और धारण कर सके, उसका उच्चारण कर सके। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर रोते हैं, वो कहते हैं, एकाकी आमार नाही पाए बल, मैं अपने आप को बहुत बलशाली समझता हूं, योग्य समझता हूं, लेकिन फिर भी मैं अनुभव कर रहा हूं कि मुझे अकेले में कोई भी सामर्थ्य नहीं है, मैं हर समय निर्बल हूं। एकाकी आमार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी हे गुरुदेव हे वैष्णव ठाकुर, आप क्या करो, मेरे ऊपर कृपा करो। देह कृष्ण नाम धने श्रद्धा बिंदु दिया, इस हरि नाम के प्रति मेरी प्रगाढ़, मेरे हृदय में क्या करो, प्रगाढ़ श्रद्धा प्रदान करो, जिसके द्वारा मुझे शक्ति मिलेगी इस हरि नाम का उच्चारण करने के लिए। इसीलिए जो वैष्णव गण है वो क्या है करते हैं, अपने जीवन में जो कृष्ण नाम है उसको अपना प्राण धन बनाते हैं, लाइफ एंड सोल जिसको कहते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण है, इसलिए ये नाम व्रत हमें लेना चाहिए। और वास्तव में हम सबने आज दो तीन व्रत लिए हैं, अलग अलग भक्तों ने। पहला व्रत क्या है, एकादशी निर्जला, दूसरा व्रत गुरुदेव से हमने लिया है 16 मालाओं का जप, और आज और हम सोच रहे थे क्या करना, 64 राउंड शांत करना। तो ये नाम व्रत लेना बहुत महत्वपूर्ण है। और व्रत के लिए क्या आवश्यक है, किसी भी व्रत को कंप्लीट करना है, व्रत का मतलब है वाव, उसको कंप्लीट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। और दृढ़ता की आवश्यकता है, और उस दृढ़ता के द्वारा ही किसी व्रत को हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु बहुत यूनिक पर्सनालिटी है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने से अधिक अपने भक्तों का गुणगान किया है, अपने से अधिक अपने जो डिफरेंट अलग अलग भक्त हैं उनसे भगवत भक्ति की विभिन्न जो सिद्धांत हैं, विभिन्न जो शिक्षाएं हैं या भक्ति के जो तत्व हैं उनकी उन्होंने स्थापना की है। बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा या कोई लेक्चर्स नहीं दिए, दो ही बार उन्होंने लेक्चर दिए हैं, और सुनने के लिए कितने वक्ता थे, श्रोता एक, दोनों समय में कितने श्रोता, एक, एक वक्ता और एक श्रोता, वो श्रोता नहीं था लेकिन दशाश्वमेध घाट पर उन्होंने इलाहाबाद में सनातन गोस्वामी को और बनारस में उन्होंने रूप गोस्वामी को, हाँ तो दो ही बार। तो लेकिन कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु हमेशा अपने जो अलग अलग भक्त हैं उनकी सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठता को स्थापित करते हैं। वो कहते हैं, भक्ति प्रेम तत्व कहे राय करी वक्ता आपने प्रद्युम्न मिश्र सहाय श्रोता। तो एक बार प्रद्युम्न मिश्र जो ब्राह्मण थे जगन्नाथपुरी में, वो चैतन्य महाप्रभु के पास आया और उन्होंने कहा, हे चैतन्य देव, मेरे हृदय में कृष्ण कथा सुनने की बहुत इच्छा जागृत हो गई है, प्लीज आप क्या करो, कृष्ण कथा को सुनाओ। चैतन्य महाप्रभु कहते, आमी कृष्ण कथा आमी नहीं जानी, मैं तो कृष्ण कथा को जानता नहीं हूं, मुझे केवल एक ही चीज आती है, सुनना। और मैंने पहले भी अलग अलग लोगों से सुना है। जब मैं दक्षिण भारत की यात्रा में गया तो मैंने रामानंद राय से सुना, तो उन्होंने कहा कि वास्तव में प्रद्युम्न मिश्र कृष्ण कथा वर्णन करने की योग्यता, सामर्थ्य, शक्ति किसके पास है, तो वो रामानंद राय है। तुम उनके पास जाओ और उनके मुखारविंद से सुनो। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के द्वारा भक्ति प्रेम तत्व की स्थापना करते हैं। और कृष्णदास कविराज कहते हैं, हरिदास द्वारा नाम महात्म्य प्रकाश, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास। फिर हरिदास ठाकुर जिनका जन्म नीच यवन कुल में हुआ था, मुस्लिम थे जन्म से, उनके द्वारा हरिदास द्वारा नाम महात्म्य प्रकाश, हरिदास ठाकुर के द्वारा नाम का जो महिमा है उसको प्रकाशित किया सारे जगत को। और जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु ने नाम की महिमा को सुना, किससे सुना, हरिदास ठाकुर से। जो भक्ति विनोद ठाकुर ने ग्रंथ लिखा है हरिनाम चिंतामणि, नाम तत्व की सारी व्याख्या उसमें है, वो कुछ और नहीं है, कन्वर्सेशन है, संवाद है, किसका, चैतन्य महाप्रभु का और हरिदास ठाकुर का। चैतन्य महाप्रभु एक दिन सुबह सुबह जाते हैं हरिदास ठाकुर के पास और कहते हैं कि मैं नाम के बारे में सुनना चाहता हूं, भगवत नाम की महिमा को सुनना चाहता हूं। हरिदास ठाकुर कहते कि आप मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो, आप तो भगवत नाम को लेके आए हो, आप ही उसका वितरण कर रहे हो और आप सर्वाधिक महिमा जानते हो, लेकिन फिर भी अब मुझसे क्यों चाहते हो, सुनना क्यों चाहते हो। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से नाम महिमा का प्रकाश, नाम महिमा की स्थापना हरिदास ठाकुर के द्वारा करते हैं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से हरिदास ठाकुर का जो जीवन कृष्ण नाम के प्रति केंद्रित था। तो ऐसे महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के द्वारा नाम महिमा को स्थापित किया और सनातन गोस्वामी के द्वारा भक्ति के जितने भी सिद्धांत हैं, फिलोसॉफिकल जो एस्पेक्ट्स है भक्ति के, उनको, उनकी स्थापना उन्होंने की। श्री रूप द्वारा ब्रजेर प्रेम रस लीला, के बुझे पार गंभीर चैतन्य रलीला। तो ऐसे रूप गोस्वामी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने जो ब्रज का जो प्रेम है, ब्रज प्रेम रस है, उसकी स्थापना रूप गोस्वामी के द्वारा की। रस तत्व के सर्वोत्तम ज्ञाता कोई है, वो रूप गोस्वामी है। इसलिए हम रूप गोस्वामी को रोज प्रणाम करते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदांतिकम्। कब वो रूप गोस्वामी मुझे अपने चरण कमल प्रदान करेंगे, जो चैतन्य महाप्रभु के हृदय के अभिष्ट, उनके इच्छा को जानने वाले हैं। और वास्तव में रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के हृदय को जानते थे, चैतन्य चरितामृत में उस विस्तार लीला का वर्णन आता है। और हृदय को जब रूप गोस्वामी, चैतन्य रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रहते थे, हरिदास ठाकुर की कुटिया में, वो दोनों एक ही कुटिया में रहते थे, जब भी रूप गोस्वामी वृंदावन में से जाते थे तो हरिदास ठाकुर के साथ सिद्ध बकुल में रहते थे। तो एक दिन हरिदास ठाकुर बाहर गए थे और रूप गोस्वामी वहां थे, और रूप गोस्वामी ने भी एक श्लोक लिखा और जो कुटिया है उसके ऊपर छत में ऐसे डालकर वो चले गए बाहर स्नान के लिए वगैरह। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु आए, देखा ना हरिदास ठाकुर है ना रूप गोस्वामी, कुटिया में गए और जैसे बाहर निकल रहे थे तो उनका सर के पास ही ऐसे ऊपर देखा कि कुछ ताल पत्र वहां लटका हुआ है या रखा हुआ है घास के अंदर। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको निकाला, निकाल के वो श्लोक पढ़ा उन्होंने जिसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है, और जिस श्लोक के द्वारा रूप गोस्वामी वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के हृदय को जानते हैं। महाप्रभु ने देखा तो चैतन्य महाप्रभु अचंभित हो गए कि ये रूप गोस्वामी कैसे मेरे हृदय को जान पाया। और जैसे बाहर आए उसी समय रूप गोस्वामी आए और महाप्रभु ने वो श्लोक पढ़ा और रूप गोस्वामी थप्पड़ लगाए। एक प्रेम का वो आदान प्रदान था। वो रूप गोस्वामी जानते थे चैतन्य महाप्रभु के हृदय को, क्योंकि जब रथ यात्रा होती थी तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को देखकर हमेशा गोपियों के भाव में रोया करते थे और एक विशेष श्लोक का उच्चारण करते थे, ये कौमार हरा वरा। उस श्लोक में वो कहा करते थे, कुरुक्षेत्र में जब वो गोपियों से मिलते हैं वृंदावन के वियोग में, श्रीमती राधिका जब कृष्ण से मिलती है कुरुक्षेत्र में, और उनका जो भाव है हृदय का, उस भावना को चैतन्य महाप्रभु प्रकट करते थे रथ यात्रा के समय। वो श्लोक कोई भी नहीं जानता था कि एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं, और महाप्रभु कई घंटे तक उस श्लोक को बोला करते थे, लेकिन रूप गोस्वामी उसको जानते थे। हाँ, रूप गोस्वामी ने उसका ट्रांसलेशन उसमें लिखा था उस ताल पत्र में, और महाप्रभु ने जब पढ़ा तो उन्होंने कहा वास्तव में ये तो मेरे हृदय को जानता है। और फिर रूप महाप्रभु चले गए अपने स्थान में गंभीरा में, वहां उन्होंने स्वरूप दामोदर को पूछा, हे स्वरूप दामोदर, ये रूप गोस्वामी मेरे हृदय को कैसे जान पाया? उन्होंने कहा आपने उनका आलिंगन किया था और उस आलिंगन के द्वारा आपने सारी शक्ति उनमें संचारित की थी, और उसके माध्यम से ही वास्तव में रूप गोस्वामी आपके हृदय को जान पाए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु अपने इन अलग अलग भक्तों के द्वारा भक्ति के जो सर्वोत्कृष्ट जो एस्पेक्ट्स हैं, सिद्धांत है या तत्व है, उनकी स्थापना उन्होंने अपने भक्तों के द्वारा की और उनका गुणगान किया सारे जगत में। तो ऐसे हरिदास ठाकुर ये पहले उदाहरण है कि जिन्होंने हरि नाम को क्या किया है अपने जीवन में, अपना प्राण उन्होंने बनाया है, लाइफ एंड सोल। जैसे हरिदास ठाकुर सदैव कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे, तो मुस्लिम राजा ने उनको बंदिस्त किया और उन्होंने कहा ये पुराण आदि का अध्ययन छोड़कर हिंदुओं का जो ग्रंथ आदि है उनको छोड़ो, और तुम क्या करो, कुरान आदि का अध्ययन करो, अल्लाह के नामों का उच्चारण करो। तो इन्होंने स्वीकार नहीं किया और हरिदास ठाकुर निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे। तो उस बादशाह ने कहा यदि आप इस कृष्ण नाम को नहीं छोड़ोगे तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। हरिदास ठाकुर तैयार थे, राजा ने आदेश दिया उनके सेवकों को कि इस हरिदास को ले जाओ 22 बाजारों में ले जाओ और मल्लाओं के द्वारा इसको पिटाई करो इसकी। हाँ, तो वो जो मल्लाज हैं वो ले गए हरिदास ठाकुर के हाथ पांव आदि में चैन वगैरह डालकर घसीटते हुए 22 बाजारों में अलग अलग, जैसे फरीदाबाद में हर सेक्टर में होड़ा मार्केट है, तो अलग अलग 22 डिफरेंट 22 सेक्टर्स में ले गए होंगे, और हर होड़ा मार्केट सोचो कितना दूर है, घसीटते हुए ले जाना, और हर मार्केट में हजारों लोग एकत्रित हुए थे और उनके सामने हरिदास ठाकुर को मारा जा रहा था। हाँ, और कृष्ण नाम को छोड़ने के लिए कह रहे थे। हरिदास ठाकुर कहते हैं खंड खंड है यदि जाओ मोर प्राण तबुत नामी वदने छाड़ी हरि नाम। हाँ, कि मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाए लेकिन फिर भी ये जो कृष्ण नाम रूपी धन मुझे प्राप्त हुआ है उसको मैं कभी भी नहीं त्यागूंगा। इतना अधिक आसक्ति, इतना अधिक गहरा अनुराग भगवान नाम के प्रति हरिदास ठाकुर का। तो ऐसे हरिदास ठाकुर नाम व्रत उन्होंने लिया था एक प्रकार से। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से हरिदास ठाकुर विदाउट फेल हर रोज 300,000 नामों का जप किया करते थे, 192 राउंड्स वो उच्चारण करते थे रोज। तो ऐसे हरिदास ठाकुर अपने जीवन के अंत काल तक उन्होंने क्या नहीं किया, हरि नाम को नहीं छोड़ा, और कह संख्या पूर्वक नाम को नहीं छोड़ा, ऐसे नहीं कि हरि नाम को नहीं छोड़ा, क्योंकि 6 गोस्वामियों का वो गुण है। श्रीवास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य कहते हैं संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, कि संख्या पूर्वक भगवान के नामों का गान करना हर रोज। तो हरिदास ठाकुर भी उसी प्रकार से संख्या पूर्वक कृष्ण के नामों का गान करते थे। केवल हरिदास ठाकुर ही नहीं, चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते कि चैतन्य महाप्रभु भी अपनी मालाओं को गिनते हुए संख्या पूर्वक नाम का उच्चारण करते थे, चाहे वो दक्षिण भारत की यात्रा में गए हो, चाहे वो वृंदावन की यात्रा में गए हो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप तब तक टीचर नहीं हो सकते, आप खुद शरणागत नहीं है तो शरणागति की शिक्षा नहीं दे सकते। आपने आचरी प्रभु सिखाए सवारे, आपने ना कहले धर्म सिखाने न जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवते गाय। कि अपन हम यदि आचरण नहीं करते हैं तो हमें सिखाने का अधिकार नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आपने ना कहले धर्म सिखाने न जाए, धर्म की शिक्षा तब तक हम नहीं दे सकते जब हम उसको स्वयं प्रैक्टिस नहीं करते। यही तो सिद्धांत गीता भागवते गाय, कि यही सिद्धांत कहां वर्णित है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में। ऐसे हरिदास ठाकुर महान आचार्य हैं और नाम व्रत उन्होंने लिया था, और उस व्रत से अपने जीवन के आखिरी सांस तक उस व्रत को उन्होंने छोड़ा नहीं है। हाँ, तो ऐसे हरिदास ठाकुर की आयु लगभग 80 साल की थी जगन्नाथपुरी में जब वो निवास कर रहे थे, और उस समय चैतन्य महाप्रभु रोज हरिदास ठाकुर के लिए जगन्नाथ का प्रसाद वो भेजा करते थे, और हरिदास ठाकुर जो भी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्राप्त जो प्रसाद है उसको स्वीकार करते थे बड़े आनंद पूर्वक, और सदैव नाम संकीर्तन में मग्न रहते थे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
यही वास्तव में दृढ़ व्रता है। हरिदास ठाकुर का उदाहरण क्या है कि किस प्रकार से व्यक्ति नाम के प्रति दृढ़ व्रत को स्वीकार करता है। चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन गोविंद को भेजा था, एक दिन गोविंद महाप्रसाद लैया हरिदास दीते गेला आनंदित हैया। एक दिन चैतन्य महाप्रभु नहीं जा पाए। चैतन्य महाप्रभु एक भी दिन हरिदास ठाकुर को देखे बिना रहते नहीं थे, उनसे बातें किए बिना नहीं रहते थे, उनसे मिले बिना नहीं रहते थे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने जाते थे और दर्शन के बाद सीधा हरिदास ठाकुर के पास आते थे प्रसाद को लेकर, और हरिदास ठाकुर से मिलते थे। तो हरिदास ठाकुर के पास चैतन्य महाप्रभु एक दिन नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपने जो सेवक है गोविंद उनको भेजा प्रसाद लेकर। तो जब ये हरिदास ठाकुर के पास गोविंद गए तो गोविंद को देखकर ही हरिदास ठाकुर को बहुत अधिक आनंद हुआ। ये वैष्णव का लक्षण है, भक्तों को देखकर हमारा हृदय क्या होना चाहिए, आनंदे हृदय नाचे, हृदय में आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। तो हरिदास ठाकुर ने गोविंद को देखा तो बहुत अधिक आनंदित हुए, और उन्होंने क्या किया, हरिदास ठाकुर उस समय लेटे हुए थे, जर्जर वृद्ध शरीर हो गया था उनका, थके हुए थे। देखे हरिदास करे आछे शयान, मंद मंद करिते छे संख्या संकीर्तन। हरिदास लेटे हुए थे अपने कुटिया के बाहर और मंद मंद आवाज से क्या कर रहे थे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
चाहे आवाज जोर जोर से ना भी निकले, लेकिन हरिदास ठाकुर बिल्कुल मंद मंद ध्वनि हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे। गोविंद कहे उठ आसी करह भोजन, हरिदास कहे आजी करी मुलंघन। तो गोविंद ने कहा कि उठो उठो हरिदास, आपके लिए प्रसाद लाया हो, चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद भेजा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आज मैं क्या करूंगा, प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। तो इन्होंने पूछा होगा क्यों नहीं ग्रहण करोगे, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, संख्या कीर्तन पूरे नाही के मते खाईबा, महाप्रसाद आनिया छे के मते उपेक्षिबा। तो उन्होंने कहा मेरा दुर्भाग्य है कि अभी तक मेरा जो संख्या पूर्वक नाम है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी इतनी लंबी संख्या 192 मालाओं की संख्या सुनने मात्र से हम स्तंभित हो जाते हैं। वो कहते हैं अभी भी ये जो संख्या पूर्वक नाम है, एक्चुअली भगवान देखते हैं जब आप सेवा करते हो तो स्पिरिट देखते हैं भगवान, सेवा का स्पिरिट एटीट्यूड को देखते हैं, किस भावना से और किस उत्साह आदि से आप उस सेवा को कर रहे हो, किस भावना से कर रहे हो। तो हरिदास ठाकुर जब हरि नाम के प्रति इतने अधिक आसक्त थे और हरिदास ठाकुर ने कहा कि अभी तक मेरा संख्या पूर्वक नाम नहीं हुआ है, मैं कैसे प्रसाद ग्रहण करूंगा, मैं प्रसाद ग्रहण करने का अधिकारी नहीं हूं। जैसे टेंपल में टेंपल डिवोटीज को दंड देते हैं, नो मंगल आरती नो प्रसाद, कई मंदिर में होता है ना, लेकिन वो बेचारे ब्रह्मचारी कहा ना कहा खा ही लेते हैं। तो वैसे स्वयं ही हरिदास ठाकुर ने इस तप को स्वीकारा था, इस चीज को उन्होंने स्वीकारा था। तो हरिदास ठाकुर कहते अभी भी मेरा संख्या पूर्वक नाम उच्चारण नहीं हुआ है, मैं कैसे उसको स्वीकार करूं। लेकिन फिर भी ये तो महाप्रसाद है, और शास्त्र कहते हैं कि गुरु वैष्णव और प्रसाद को कभी वेट नहीं करवाना चाहिए, वो आपके पास नहीं कहना चाहिए रुको रुको अभी मुझे बहुत बिजी हूं, इंपॉर्टेंट कार्य में बिजी हूं, नहीं, जैसे ही वो उपस्थित है तुरंत सेवा में लग जाना चाहिए। प्रसाद, गुरु और वैष्णव, उनको डिले नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये तो महाप्रसाद है, कैसे मैं इसकी उपेक्षा करूं, उपेक्षा का मतलब है अनादर करूं। उन्होंने कहा महाप्रसाद आनी अच्छे के मत उपेक्षा, आपने तो महाप्रसाद लाया है जगन्नाथ का, और प्रसाद में और भगवान में क्या नहीं है, अंतर नहीं है, तो आप तो महाप्रसाद लेके आए हो तो उसकी उपेक्षा मैं कैसे करूं। तो ऐसे हरिदास ठाकुर क्या करते हैं, उसमें से उस प्रसाद को प्रणाम करते हैं और आदर के लिए उसका सेवन करते हैं, और गोविंद वापस जाता है और चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के बारे में पूछते हैं। वास्तव में हम आध्यात्मिक जीवन में तभी सुरक्षित हैं जब हम भगवान के महान भक्तों के स्मरण में हैं। स्मरण में मीन्स कि कोई महान भक्त हमें याद कर रहे हैं हमारी सेवाओं को देखकर या किसी ना किसी प्रकार से, तब क्या है वास्तव में हमारा आध्यात्मिक जीवन में हम सुरक्षित हैं। हाँ, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु सदैव हरिदास ठाकुर का स्मरण में मग्न रहते थे। तो ऐसे हरिदास ठाकुर अपने जीवन काल में कई प्रकार के आध्यात्मिक चीजों से वो गुजरे थे, लेकिन हर समय चैतन्य महाप्रभु उनकी रक्षा करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने जब अपना सप्त प्रहरिया भाव महाप्रकाश लीला श्रीनिवास पंडित के घर में प्रकट किए थे, तब उन्होंने हरिदास ठाकुर को बुलाया और कहा हरिदास जब तुम्हें ये यवन आदि मार रहे थे, पिटाई कर रहे थे, उस समय तो मैं चक्र लेकर तैयारी था उनको मारने के लिए, लेकिन तुम्हारे हृदय की जो भावना है, तुम इतने सहनशील थे और दूसरों के प्रति इतनी अधिक करुणा, और तुम बारंबार इस प्रार्थना का उच्चारण कर रहे थे कि ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, हे कृष्ण आप इनको क्या करो, क्षमा करो, इसी कारण से बस मैं अपना चक्र पकड़ के रखा था, छोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी तुम्हें याद होना चाहिए कि जब वो तुम्हें प्रघात कर रहे थे, मारे पीटे जा रहे थे तुम्हें, तो तुम्हारे पीठ के ऊपर मैं क्या था, मैंने आलिंगन किया हुआ था, और सारी जो पिटाई है वो कौन ले रहा था, चैतन्य महाप्रभु कहते मैं ले रहा था, तुम्हें यदि विश्वास नहीं है तो मेरे पीठ को देखो। तो श्री श्रीनिवास पंडित के घर में महाप्रकाश लीला जो 21 घंटे थी, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पीठ दिखाई हरिदास ठाकुर को और सारे जो चिन्ह है वो वहां थे। तो ऐसे हरिदास ठाकुर का हर समय चैतन्य महाप्रभु रक्षा करते थे, उनका स्मरण करते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर पूर्ण रूपेण उनके नाम के प्रति क्या थे, आसक्त थे, समर्पित थे, शरणागत थे। तो ऐसे हरिदास ठाकुर के बारे में गोविंद को पूछा तो गोविंद ने बताया कि आज तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो महाप्रभु से रहा नहीं गया, चैतन्य महाप्रभु तुरंत भागे। चैतन्य महाप्रभु गए सुबह और कहा हरिदास सुस्त हो क्या, तुम ठीक तो हो, सुस्त हो? तो उन्होंने कहा नमस्कार करते हो कैला निवेदन, शरीर सुस्त है मोरा असुस्त बुद्धिमान। हे चैतन्य देव, पहले तो महाप्रभु आए और उन्होंने पूछा आप ठीक हो, तो इन्होंने तुरंत प्रणाम किया देखने मात्र से और उनको कहा कि मेरा जो शरीर है वो बिल्कुल ठीक है लेकिन मेरा मन और मेरी बुद्धि ठीक नहीं है। प्रभु कहे कौन व्याधि कहत निर्णय, चैतन्य महाप्रभु ने कहा जनरली इतने 80 साल की आयु में तो क्या ठीक नहीं रहता, शरीर ठीक नहीं होता। अभी हम 40 क्रॉस करते हैं या 40 के आसपास जाते हैं तभी सारे कष्ट शरीर में अवतरण लेते हैं या आ जाते प्रकट होने लगते हैं। तो 80 साल की आयु थी, 80 से थोड़ा अधिक, तो ऐसे हरिदास ठाकुर कहते मेरा शरीर तो बिल्कुल ठीक है लेकिन अस्वस्थ क्या है मेरा, मेरा मन और मेरा जो बुद्धि है वो अस्वस्थ है। तो महाप्रभु ने कहा क्या क्या बीमारी क्या है तुम्हारी, बताओ बताओ जरा। तो जो हरिदास ठाकुर कहते तेहो कहे संख्या कीर्तन ना है पूरा है, कि मेरा ये जो भगवान नाम संकीर्तन है, भगवान नाम का उच्चारण संख्या पूर्वक है, वो संख्या क्या नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो रही है। तो ये बीमारी है। प्रभुपद उस तात्पर्य में लिखते हैं कि वास्तव में भक्तों को तब समझना चाहिए कि मेरा आध्यात्मिक जीवन बीमारी में गुजर रहा है जब अपनी नियमित संख्या पूर्वक नाम हमारा नहीं हो रहा है। तो ऐसे हरिदास ठाकुर इस प्रकार से आसक्त थे कृष्ण नाम के प्रति और उन्होंने ये नाम व्रत को लिया था। इसलिए बहुत आवश्यक है हर एक साधक को, हर एक भक्त को अपने पर्सनल जीवन में भगवान का जो पवित्र नाम है उस नाम व्रत को धारण करना। इवन सारे आचार्यों ने नाम व्रत को धारण किया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब उन्होंने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की थी तो उसके बाद और नया नया भक्ति विनोद ठाकुर ने सारे लोगों से एक एक रुपया कलेक्ट किया था डोनेशन और उससे चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है योगपीठ वहां मंदिर निर्माण कराया था। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने नाम व्रत शुरू किया। उनकी आयु, भक्ति सिद्धांत महाराज की आयु 31 साल के थे और वो रोज 3 लाख नाम का उच्चारण करते थे और उस यज्ञ को उन्होंने नाम दिया था शतकोटि नाम यज्ञ। शतकोटि कितने होते हैं, 1 अब्ज ना, 100 करोड़ कितना होता है, शतकोटि 100 करोड़ हो जाते तो उसको क्या कहते हैं, 1 अरब ना। तो ऐसे शतकोटि नाम वो ग्रहण करने वाले थे, उच्चारण करने वाले थे, इसका व्रत उन्होंने लिया था और भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वयं यह यज्ञ अपने जीवन में किया था। भक्ति विनोद ठाकुर ने स्वयं उस माला पर चांद किया था इतना अधिक नाम और वो माला उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को प्रदान किए थे और जिस पर लगभग 1 अरब या 100 करोड़ नाम का उच्चारण भक्ति सिद्धांत महाराज कर रहे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक उन्होंने स्वयं ही अपने हाथ से घास की कुटिया बनाई चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान के आगे और उस कुटिया में बैठकर अकेले इस हरि नाम का उच्चारण करने लगे। चैतन्य महाप्रभु का एक डीटी उन्होंने अपने सामने रखा विग्रह और उस विग्रह के सामने रोज 3 लाख नाम का उच्चारण करते थे और केवल गंगा स्नान करने के लिए जाते थे और निरंतर कृष्ण नाम लेते थे। स्वयं ही दिन में एक बार प्लेन राइस या खिचड़ी वो बनाते थे, उसको खाते थे और निरंतर गाते थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा ये हरि नाम का उच्चारण भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने 9 साल 4 महीने तक कंटिन्यू किया इस नाम व्रत को। और उस नाम व्रत के समय में भक्ति सिद्धांत महाराज हर चीज ग्रेन यूज करते थे, शॉल ग्रेन, उनका जो लिखने का इंक है वो भी ग्रेन। तो वो कहते थे ये ग्रेन क्या है, सेपरेशन, कृष्ण के प्रति विरह का ये प्रदर्शन कराता है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज निरंतर चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश हो, कहते हैं कि जब बारिश के दिन आते थे तो घास का जो छत है वो गिरने लगता था, पानी टपकने लगता था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज एक हाथ में अम्ब्रेला पकड़ते थे, छाता, और दूसरे हाथ में क्या था, बिड बैग और जिसमें चांद करते थे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी अपने जीवन में इस नाम व्रत को धारण करते हैं और आने वाले जो साधक हैं उनको ये शिक्षा प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद के जीवन से हम देखते हैं प्रभुपाद के पास यही आध्यात्मिक बल था, नाम सेवा गुरु सेवा। उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया और वो उस आदेश का पालन करने के लिए पूरा जीवन अपना शरीर तन मन हर चीज उन्होंने अर्पित की थी उस एक आदेश को सर्व करने के लिए। और सारे कष्टों को झेल कर श्रील प्रभुपाद जलदूत के द्वारा अमेरिका पहुंचते हैं और वहां वो एक पोयम लिखते हैं मार्किने भागवत धर्म, अमेरिका में भागवत धर्म का प्रचार। तो वहां उस कविता में वो कहते हैं भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब दरो भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो। वो कृष्ण को प्रार्थना करते हुए करते कहते हैं कि हे कृष्णा आप मुझे ऐसे स्थान में लाए हो, इतने भयावह स्थान में लाए हो, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, हाँ लेकिन एक चीज मुझ में है। क्या है वो? कहते भक्ति नाही वेद नाही, मेरा नाम तो आपने भक्ति वेदांत रखा है, भक्ति का तो लवलेश मेरे हृदय में नहीं है, वेदांत ज्ञान वेद ज्ञान तो मुझ में है ही नहीं, हाँ लेकिन एक चीज मुझे लगता है, क्या है? नामे खूब डरो, मैंने एक चीज को बहुत पकड़ के रखा है और फुल फेथ है कि आपका ये जो पवित्र नाम है यही इनफ है सारी चीजों को बदलने के लिए, हाँ सारी शक्तियों को प्रदान करने वाला है आपका ये जो नाम है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद वास्तव में अपने साथ कुछ ले गए हैं यहां से, तो वो कृष्ण नाम को ले गए हैं। हाँ उनका हृदय हाँ कृष्ण नाम से सर्वदा भरा रहता था। श्रील प्रभुपाद हमेशा चाहे अकेले हो या हर स्थिति में क्यों ना हो वो निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे। अपने परिवार को छोड़ने के बाद भी वो अकेले झांसी में रहे, पहाड़गंज में रहे, चाहे वृंदावन में रहे, वहां से अमेरिका भी गए, उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन चाहे हर स्थिति में क्यों ना हो ग्रहे था को वने था को सदा हरि बोले डाको। चाहे आप घर में रहो, जंगल में रहो, वन में रहो या बड़े बड़े शहरों में रहो, लेकिन निरंतर क्या करो?
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
तो ऐसे प्रभुपाद केवल ये आंदोलन उन्होंने नाम के द्वारा ही शुरू किया है और ये आंदोलन चल भी रहा है किसके माध्यम से? केवल हरि नाम के द्वारा। और इस आंदोलन की सबसे प्रमुख चीज कोई है तो वह है कृष्ण नाम, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जो इस आंदोलन को जीवित रखता है। हाँ ये जो हरि नाम इस आंदोलन से चला जाए तो इस आंदोलन के पास जो मर्जी सुविधाएं हो, जो मर्जी बड़े बड़े योग्यताएं क्यों ना हो, वो क्या है? यूजलेस है। तो ऐसा हरि नाम श्रील प्रभुपाद स्वयं ले गए और अकेले टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में वृक्ष के नीचे एक छोटा सा करता लेकर गान कर रहे थे अकेले। हाँ ये जो कृष्ण नाम सारे जीवों को आकर्षित करने का सामर्थ्य रखता है, जड़ जीव हो चाहे चर हो या अचर हो, सबको ये कृष्ण नाम अपनी ओर आकर्षित करने का सामर्थ्य रखता है। तो ऐसा नाम व्रत श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हरिदास ठाकुर और हम देखते चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण किया तो उनकी जो पत्नी है विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया भी बहुत दृढ़ थी कृष्ण नाम का उच्चारण करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु कटवा में जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, नित्यानंद प्रभु उनको राड़ देश आदि का भ्रमण करते करते वो शांतिपुर पहुंचे लगभग 4-5 दिन के बाद अद्वैत आचार्य के घर में, और वहां से चैतन्य महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य को भेजा था कि आप जाओ नवदीप और सारे नवदीप वासियों को निवेदन दो, इन्वाइट करो मुझसे मिलने के लिए, लेकिन एक को इन्वाइट मत करना। वो कौन है? विष्णुप्रिया। संन्यास के बाद पत्नी का मुख नहीं देखना चाहिए या जो गृहस्थ आश्रम से संन्यास में गया है उसको अपने विलेज नहीं जाना चाहिए, जन्म स्थान में। तो चैतन्य महाप्रभु गए नहीं नवदीप, शांतिपुर आए हैं और उन्होंने चंद्रशेखर आचार्य को कहा था कि आप क्या करो, केवल सारे भक्तों को निवेदन दो मिलने के लिए, हाँ एक को छोड़कर, नाम तो नहीं लिया था, लेकिन हाँ तो सारा नवद्वीप खाली हो जाता है, जिसको जो भी चीज मिले उससे वो भाग रहे थे शांतिपुर की ओर, सारे नवद्वीप के निवासी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। और लक्ष्मी विष्णु प्रिया जो उनका जो घर का आंगन है उसमें आकर रोदन करती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं। और वास्तव में संन्यास से पहले चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक शिक्षा दी थी। चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन संन्यास लेकर जाने वाले थे, तो उस रात्रि में लोचनदास ठाकुर अपने ग्रंथ चैतन्य मंगल में इस लीला का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पूर्व उनके 5 भक्तों को पता रहता है कि मैं वो संन्यास ग्रहण करने वाले हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, मुकुंद हैं, श्रीवास हैं, सची माता हैं। हाँ, तो जैसे सची माता को पता चला, सची माता तो एक मूर्ति के समान स्तब्ध रहती थी दिन रात, केवल एक ही चीज, हाँ उनके आंखों से आंसू ही निकलते थे, जैसे कोई स्टैचू है, मूर्ति है और वो मूर्ति रो रही है, निरंतर अश्रुपात कर रही है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु शाम के समय में घर आए, विष्णु प्रिया ने उनको भोजन प्रसाद सर्व किया, सर्व करते करते सर्व किया वो रो ही रहे थे, क्योंकि उनको पूरे नवदीप से पता चला था हाँ कि मेरे पति क्या करने वाले हैं, संन्यास ग्रहण करने वाले हैं। तो उनको बहुत, अभी अभी तो विवाह हुआ था, कुछ ही महीने बीते थे लक्ष्मी प्रिया के बाद। और फिर जब वो महाप्रभु सोने के लिए जाते हैं तो विष्णु प्रिया आती है, उनके चरणों को अपने गोद में लेते हुए रोते जा रही है, उनके आंसुओं से सारे उनके चरण भीग रहे थे, और रोते रोते उनको पूछती है, मैंने जो सुना है वो सही है क्या, आप संन्यास ग्रहण करने वाले हैं? तो कहती, कहा किसने कहा, ये संन्यास वर्ड में पहली बार सुन रहा हूँ, ये संन्यास वगैरह मैंने ग्रहण करने वाला, मैं अपनी माता को कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम्हारे जैसे सौंदर्यवती पत्नी को कैसे, सुशील पत्नी को कैसे त्याग सकता हूँ, और इतने नवदीप वासी जो मुझसे इतना अधिक प्रीति रखते हैं उनको मैं कैसे त्याग सकता हूँ। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे, नहीं नहीं संन्यास नहीं लूंगा, तुम सो जाओ। हाँ, तो सोते मध्य रात्रि में फिर से विष्णु प्रिया उठती है और फिर रोते हुए कहती है, उनका हाथ पकड़ते अपने सर में रखती है, अभी बताइए क्या आप संन्यास ग्रहण करने वाले हैं? तो महाप्रभु से रहा नहीं गया, कहा कि हाँ मैं संन्यास ग्रहण करने वाला हूँ। और फिर उनको अपना षडभुज रूप उनको दिखाते हैं और वो कहते हैं कि तुम भूल गई हो, वास्तव में हम इस जगत में विशेष कार्य के लिए आए हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़ा लेक्चर देते हैं, हाँ चैतन्य मंगल में वो लेक्चर वर्णित है, जिसमें बहुत सारी शिक्षा देते हैं। उनमें प्रमुख चीज चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वास्तव में इस जगत में सारी चीजें अशाश्वत हैं, दो ही चीजें शाश्वत हैं और उन दो चीजों का ही केवल व्यक्ति को शेल्टर लेना चाहिए, आश्रय ग्रहण करना चाहिए, और वो क्या है, वैष्णव और दूसरा है कृष्ण नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जब सारे नवदीप वासी शांतिपुर चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए गए तो अकेली विष्णु प्रिया रो रही थी। तो बाद में बाद के जो जीवन में वर्णन आता है कि जो विष्णु प्रिया देवी है वो क्या करती है, रोज हाँ कृष्ण नाम का उच्चारण करती है, हरे कृष्ण मंत्र का, और हर हाँ दो वो छोटे से मटके रखती है, एक तो खाली होता है और दूसरे में चावल के दाने होते हैं ड्राई, और एक माला होती थी तो उसमें से एक दाना उठाती थी दूसरे मटके में डालती थी। सुबह से अर्ली मॉर्निंग से चैतन्य भागवत आदि जो ग्रंथ हैं, बाद के जो आचार्य हैं उन्होंने वर्णन किया है कि विष्णु प्रिया को सूर्य और चंद्रमा भी नहीं देख पाते थे, क्योंकि वो घर से बाहर निकलती नहीं थी, और निकलती थी तो ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने के लिए, हाँ और वहां आके केवल चैतन्य महाप्रभु का जो पिक्चर होता था, एक फोटो जिसके सामने बैठकर वो हरि नाम का उच्चारण करती थी अर्ली मॉर्निंग से, ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही, और निरंतर 3-4 बजे तक। और जब संध्या का समय होता था तो तब तक हर माला के साथ एक चावल का दाना डालती थी, तो जितने चावल के दाने इकट्ठा होते थे उसको कुक करते थे और महाप्रभु को अर्पित करके उसको ग्रहण करते थे। तो इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग जो अटैचमेंट है कृष्ण नाम के प्रति, वो विष्णु प्रिया के जीवन में हम देखते हैं। इसलिए विष्णु प्रिया देवी कहती थी, भज गौरांगो कह गौरांगो लह गौरांगे रे नाम रे, जय जन गौरांग भजे से है हमारा प्राण रे। तो कहते थे गौरांग का नाम लो, गौरांग का भजन करो। जो व्यक्ति गौरांग महाप्रभु का नाम लेता है वो व्यक्ति मेरा क्या है, प्राण धन है, मैं उससे अफेक्शन रखती हूँ। तो इस प्रकार से इसे विष्णु प्रिया देवी के कार्यकलापों से भी हम देखते हैं। इस प्रकार से ये जो नाम व्रत है, विशेष नाम व्रत, और ये व्रत हमें आध्यात्मिक गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसको हमें गंभीरता से निभाना चाहिए, गंभीरता से उसको स्वीकार करना चाहिए। जब हम इस नाम व्रत को करते हैं या अधिक नाम को हम ग्रहण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो रुचि है कृष्ण नाम में हो जाता है, नामे रुचि। और तभी हम क्या कर सकते हैं, कीर्तनीय सदा हरि, तब कीर्तनीय सदा हरि हो सकता है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन बड़ा सरल है। जब हम गुरु और वैष्णव के मार्गदर्शन में क्या करते हैं, उसका पालन करते हैं विनम्रता के साथ, कपटता को छोड़कर। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं क्यों हमारा आध्यात्मिक जीवन ड्राई रहता है। जैसे चैतन्य चंद्रोदय नाटक में कवि कर्णपुर लिखते हैं भक्ति दो प्रकार की है, वो कहते हैं भक्ति विद नेक्टर और भक्ति विदाउट नेक्टर। मतलब भक्ति क्या कहेंगे, विद नेक्टर को क्या कहेंगे, अमृत के, मतलब जॉय भक्ति सुख के साथ, और एक दुखमय भक्ति, ड्राई नीरस, बिल्कुल ही ऐसे लगता है कि क्यों कहां फंस गया। तो दूसरा स्तर है, कवि कर्णपुर कहते हैं कि दो प्रकार के, एक तो भक्ति विद नेक्टर, जब व्यक्ति भक्ति में लगता है सही मायने में उसका अनुपालन करता है तो हर समय वो क्या रहता है, भक्ति में जॉयफुल आनंदित इंस्पायर्ड रहता है। और इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो भगवत भक्ति की विधि है ये सुख देने वाली है, और ये तभी सुखमय हो सकती है जब हम भक्ति भगवान के साथ अपने नित्य संबंध का स्मरण करते हुए करते हैं। भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, भगवान कहते तुम मेरा अंश है, और हम कहते हैं भगवान आपका अंश नहीं है, माता पिता का अंश है कि नहीं, या फिर किसी और का अंश है, देश का अंश है, उसका अंश है। तो भगवान कहते नहीं नहीं तुम मेरे अंश हो। उसी को चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। तो इस भावना के साथ जब हम भगवत भक्ति में नित्य रूप से मग्न रहते हैं, लगे रहते हैं, तब वास्तव में हम अनुभव करते हैं क्या, कि भक्ति अमृतमय है, भक्ति विद नेक्टर। इसलिए प्रभुपाद ने ये शब्द यूज किया है कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना डैश अमृत, कृष्ण भावना डैश मृत, है ना, कृष्ण भावना डैश एक तो अमृत है, फिर डैश दो तो क्या, एक है मृत। तो कुछ भक्त कृष्ण भावना में अमृत के समान निरंतर बढ़ रहे हैं, लाइफ है उनके भगवत भक्ति में। कुछ है बिल्कुल मर रहे हैं, जो लगता है बहुत ड्राई है, खाली खाली लग रहा है, कुछ आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, भक्तों का संग भी कड़वाहट महसूस हो रही है, भक्तों का संग भी टॉलरेट करना पड़ता है कि नहीं, अभी कहाँ करें हम भक्तों का संग, बेस्ट है अलग से ही रहे, अलग से भगवत भक्ति करने का प्रयास करें। जब ये अलग भावना आती है तो वो मृत की ओर हमें ले जाती है, अमृत की ओर नहीं। साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय, संसार चिन्हित्यार कौन वस्तु नाय। तो वास्तव में प्रेमी व्रत में जगदानंद पंडित कहते हैं कि मैं मुझे कोई अभिलाषा है तो इसी की अभिलाषा है, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय संसार जीने ते आर कोन वस्तु नाय, कि भक्तों के संग में कृष्ण नाम। हाँ, तो ऐसे भगवत भक्ति अमृतमय हो सकती है या मृतमय हो सकती है। तो मृतमय को क्यों होती है, हम मृत की ओर विदाउट नेक्टर की ओर हम कब प्रोग्रेस होते हैं, जब व्यक्ति भगवत भक्ति करते हुए तीन चीजों का ध्यान नहीं रखता। आचार्य गण कहते हैं कि जो भगवत भक्त उन्नति करना चाहता है उसको हमेशा इन तीन चीजों पर मेडिटेट करना चाहिए, और जब वो इन चीजों को गंभीरता से मेडिटेट करता है उसके ऊपर काम करता है तो हमेशा जीवित रहता है, विथ नेक्टर उसका भगवत भक्ति अमृतमय हो जाता है और वो आध्यात्मिक जीवन में फिक्स हो जाता है, उसी को दृढ़ व्रता कहा गया है, वो विचलित नहीं हो सकता, हिल नहीं सकता। पहली चीज है साध्य गोल। हाँ, हमेशा कि मेरे जीव क्या लक्ष्य क्या है, क्यों मैं हरि नाम का उच्चारण कर रहा हूं, क्यों मैं भक्तों के संग में हूं, क्यों सेवा में लगा हुआ हूं, क्यों अध्ययन आदि कर रहा हूं, क्यों नाना प्रकार की सेवाएं कर रहा हूं, क्या गोल क्या है मेरा, साध्य क्या है, और दूसरा क्या मेडिटेट करें, साधना, साध्य साधना, द वे टू रिच, साधना उस गोल को प्राप्त करने के लिए क्या मुझे करना है, उस पर उसको काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। और तीसरी चीज है साधु, सेंटली पर्सन, जिन्होंने हमें क्या किया है, इस चीज को सिखाया है। तो इस प्रकार से ये तीन चीजों को हम निरंतर सामने रखते हैं हर रोज, साध्य अपनी साधना और साधु। तो वास्तव में तब व्यक्ति का जो जीवन है भक्तिमय जीवन विथ नेक्टर रहता है, नहीं तो अन्यथा क्या होता है, धीरे धीरे विदाउट नेक्टर वो मृत की ओर बढ़ता है। तो जनरली भक्त ये चीज को मेडिटेट नहीं करते, गंभीरता से नहीं लेते, जानते नहीं, इसलिए उनका जो जीवन है आध्यात्मिक जीवन निरस होने लगता है, ड्राई होने लगता है, वो दूर भागना चाहते हैं, सर्विस अच्छी नहीं लगती, भक्तों का संग अच्छा नहीं लगता, हरि नाम अच्छा नहीं लगता। तो जैसे भक्ति विथ नेक्टर भक्ति विदाउट नेक्टर, उसी प्रकार से हरि नाम भी है। नाम सेवा क्या है, नाम विथ नेक्टर नाम विदाउट नेक्टर, नाम अमृत जिसको कहा गया है। तो ये नाम के साथ भी है, नाम अमृत के समान और नाम मृत भी हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए जब हम जानेंगे कि नाम के साथ मेरा क्या संबंध है, भगवान के नाम की महिमा भगवत नाम तत्व आदि को वैष्णव के मुख से हम सुनते हैं, शास्त्रों से समझते हैं, तो फिर वास्तव में नाम अमृत को हम अनुभव कर पाते हैं, जानते हैं जब कि ये नाम कृष्ण से अभिन्न है, साक्षात कृष्ण है, और ये मेरा पहला मीटिंग ऑब्जेक्ट है कृष्ण के साथ। इस भौतिक जगत में कृष्ण के साथ हमारी पहली मुलाकात किसी रूप में होती है तो वो क्या है, कृष्ण नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी प्रकार से तो नाम अमृतमय क्या है, जो महान महान आचार्यों ने अपने जीवन में वर्णन किया है। रूप गोस्वामी ने कहा है एक श्लोक में, वो कहते हैं तुंडे तांड विनी मृति वितुनते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कदम विनी घटयते कर्णार बुधेभ्य स्पृहां चेत प्रांगन संगिने विजयते सर्वेन्द्रियानां कृतिम नो जाने जनिता क्रिया भीर्मृते कृष्णेति वर्णद्वयम्। तो रूप गोस्वामी जब ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने सुना, चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर की कुटिया में थे और रूप गोस्वामी वृंदावन से आ रहे थे, तो रूप गोस्वामी एक ऐसा ग्रंथ लिखना चाहते थे जिसमें सारी कृष्ण की लीला हो, चाहे कृष्ण ब्रज में हो, कृष्ण मथुरा और द्वारका में हो, ऐसा एक बुक कंपाइल कर रहे थे, ऑल इन वन, सारे कृष्ण लीला उसमें। तो जब वो आते आते उड़ीसा में एक सत्यभामापुर जो गांव था वहां पहुंचे, तो वह सत्यभामा उनके इसमें आई स्वप्न में, और उन्होंने कहा नहीं नहीं अलग रखो, कृष्णा इन द्वारका एंड कृष्णा इन वृंदावन। तो उन्होंने आगे चल के दो ग्रंथ लिखे, ललित माधव विदग्ध माधव। और इनको थोड़ा सा उन्होंने स्टार्ट किया था, लिखा ही था इंट्रोडक्शन और कुछ चीजें लिखी थी उन्होंने शुरुआत के कुछ अध्याय। और उनको लेकर वो महाप्रभु से मिलने जा रहे थे जगन्नाथपुरी में, तो वो हमेशा अपना उसका काम में मग्न रहते थे रूप गोस्वामी। तो फिर महाप्रभु को जब पता चला तो महाप्रभु ने कहा कृष्ण को वृंदावन से बाहर ले जाने का प्रयास मत करो, उनको वहां अलग से वर्णित करो उनको। तो फिर महाप्रभु ने कहा तुमने क्या लिखा है अपने ग्रंथ में जरा सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं तुम्हारे द्वारा जो वर्णन है। तो एक पेज उठाते हैं रूप गोस्वामी के ग्रंथ का जो लिखा था नया नया उन्होंने, तो उसमें यह श्लोक था जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने सुना इस श्लोक को। महाप्रभु ने कहा ऐसा वर्णन हमने कभी नहीं सुना। और इसी श्लोक को जब हरिदास ठाकुर ने सुना तो हंसते हुए नाचने लगे। इस श्लोक का मीनिंग क्या है, वो कहते तुंडे तांडविनिम रतिम, कि ये जो कृष्ण नाम है जब मेरी मुंह में जाता है जीवा पर जाता है, तुंडे तांड विनिम रति वितुनते तुंडावली लब्धये, तो ऐसे लगता है कि एक जीवा इनफ नहीं है, एक मुंह काफी नहीं है ये कृष्ण नाम उच्चारण करने के लिए, मुझे हजारों हजारों क्या चाहिए, जीवाए चाहिए या मुंह चाहिए। कर्ण क्रोड़ कदम विनी घटयते कर्णार बुधे भ्यस्प्रहाम, कर्ण क्रोड़ मतलब जो होल है कान का जो होल है जिसमें ये जीवा के द्वारा जब ये हरिनाम वाइब्रेट हो रहा है उच्चारण हो रहा है हजारों हजारों जीवाओं के द्वारा, और जब ये कान में प्रवेश करता है मुझे ऐसे लगता है कि मुझे एक कान नहीं चाहिए। कर्णार अर्भ्युत मतलब अब्ज अब्ज कानों की आवश्यकता है जिसके द्वारा मैं इसको सुनना चाहता हूं। चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम, जब ये हरि नाम जिह्वा के द्वारा उच्चारित होता है कानों के द्वारा सुना जाता है तो मेरे चित्त में प्रवेश करता है और बाकी सारी इंद्रियां जो विषयों के प्रति भागती हैं, क्योंकि हर इंद्रिय के अपने वृत्ति है, वृत्ति में से नेचर है कार्य है जिसके ओर भागता है। आंख सौंदर्य को देखना चाहती है, कान भौतिक शब्दों को सुनना चाहते हैं, जो स्पर्श करना चाहते हैं हम भौतिक वस्तु का, जिह्वा अलग अलग रसों को स्वाद कर लेना चाहता है, नाक सूंघना चाहता है। हाँ वैसे ही कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रियों की अपने अपने वृत्ति है कार्यकलाप है। तो जब रूप गोस्वामी कहते हैं कि यह कृष्ण नाम जिह्वा के द्वारा उच्चारित होता है और कानों में प्रवेश करता है और मेरे हृदय आंगन में प्रवेश होता है हृदय में जाता है तो मेरे ये सर्वे इंद्रिया नाम कृति विजयते, मैं सारे इंद्रियों पर क्या करता हूं विजय का अनुभव करता हूं और वो सबसे हट जाती हैं इंद्रिय विषयों से। नो जाने जनिता किया भीर अमृते कृष्णेति वर्ण द्वयम, मैं नहीं जानता कि क्या अमृत भरा हुआ है कृष्णेति वर्ण द्वयम, कृष्ण का ये जो दो नाम है कृष्ण दो वर्ण है इसमें कितना अमृत है। इस प्रकार से रूप गोस्वामी की यह व्याख्या सुनकर चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंदित हुए। हरिदास ठाकुर ने तो सुना हो तो वैसे ही नामाचार्य है, उनकी सेवा से संबंधित ये श्लोक है, जैसे आपकी सेवा से संबंधित कुछ श्लोकाज है या समथिंग गुणगान होता है इन नेचुरल आप क्या होते हो आनंदित हो जाते हो। तो हरिदास ठाकुर महाप्रभु और रूप गोस्वामी के सामने नृत्य करने लगे। तो इस प्रकार से ये जो हरिनाम विथ लाइफ रूप गोस्वामी कहते हैं ये लाइफ है जिसमें रुचि विकसित हो जाती है क्योंकि सर्वाधिक मधुर है। इसलिए श्रीमती राधिका कहती है चंडीदास के गीत में आता है चैतन्य महाप्रभु उसको सुना करते थे, तो श्रीमती राधिका कहती है सखी केबा सुनाइल श्याम नाम, वो अपने दूसरे गोपिका को कहते कि हे ए सखी आप ये श्याम का नाम क्यों सुनाया मुझे, क्यों क्यों आप मुझे सुना रही हो कृष्ण का नाम, कृष्ण तो अभी मथुरा चले गए हैं। अभी ये जो श्रीमती राधिका और गोपिकाएं कृष्ण विरह में कहां है वृंदावन में है। कानेरा भितरे दिया मरमे पशिलोगो आकुल करिल मोर प्राण, वैसे ही कह रही है रूप गोस्वामी के समान है। और ये जो राधा रानी के श्लोकाज हैं जो उच्चारण कर रही है वही चीज चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु को जाकर बोली थी। किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तारबल, वो राधा रानी के इन वचनों का ट्रांसलेशन है चैतन्य महाप्रभु जो कर रहे हैं। तो यहाँ श्रीमती राधिका ललिता आदि सखी को कहती है कि क्यों आपने ये श्याम नाम को सुनाया मुझे, कानेर भीतर दिया मरमे पशी लोगो, कान के भीतर ये चला जाता है, हृदय में प्रवेश करता है, आकुल करेल मोर प्राण, हाँ मेरे हृदय को क्या करता है, विरह की अग्नि में ये करता है, आकुल करता है। ना जाने कते का मधु श्याम नामे आछे गो, वदन छाड़ी ते ना पारे में, नहीं जानती कि ये जो श्याम का मधुर नाम है इसमें कितना स्वीटनेस है, कितनी मधुरता है, मेरा जो वदन है जीवा आदि है इसको छोड़ना नहीं चाहती, इसको छोड़ना नहीं चाहती। जपिते जपिते नाम आवेश करे लोगो, केमने पाइब सखी तारे, वो कहती है कि जब जिसका उच्चारण कर करके मैं बहुत अधिक अनुरक्त हो जाती हूँ कृष्ण के प्रति, और ये मुझे आभास होता है, मैं इस लालसा का उदय मेरे हृदय में होता है कि कब मैं उस शाम को प्राप्त करूंगी। हाँ, तो वास्तव में हरि नाम हमें क्या देता है, कृष्ण के प्रति विरह की भावना। हाँ, हम जिससे अधिक विरह महसूस करते हैं समझना चाहिए कि मैं उससे बहुत अधिक आसक्त हूं, चाहे वो हमारा मोबाइल है, परिवार के सदस्य हैं, या कुछ भी ऑब्जेक्ट है, जिससे भी हमें लगता है कि अरे कुछ खो गया, या लगता है कि हाँ उस वस्तु का बहुत अधिक चिंतन है होता है, या जिससे रहा नहीं जाता जिस वस्तु के बिना, तो हमें जानना चाहिए कि मैं सर्वाधिक उससे आसक्त हूँ। तो हरि नाम हमें कृष्ण के प्रति, केवल कृष्ण के प्रति आसक्त कराता है। हाँ, इसलिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्या करना, कृष्ण के नामों का उच्चारण करना। हाँ, तो नाम में रुचि हो रही है इसका लक्षण ही है क्या, सेवा, इगरनेस, होली नेम के प्रति अनुराग बढ़ रहा है, तो उसका मतलब ही है कि सेवा के प्रति भी अनुराग बढ़ाना चाहिए। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं नामे रुचि जीवे दया और वैष्णव सेवा। हाँ, तो ये लिंक्ड है कि कृष्ण और वैष्णव की सेवा के प्रति उसका स्वाभाविक अनुराग हो जाता है। इवन चैतन्य महाप्रभु, उनका हरिनाम के प्रति इतना अधिक आसक्ता वो थे, स्वाभाविक रूप से कृष्ण की सेवा के प्रति सदैव ईगर रहते थे, और जो भी जगन्नाथपुरी में वैष्णव आते थे उनकी सेवा में स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनका पर्सनल देखभाल करते थे अपने भक्तों के माध्यम से। ऐसे सनातन गोस्वामी हरि नाम की महिमा हरि भक्ति विलास में वर्णन करते हैं, 17वें विलास में, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ हरि नाम के बारे में लिखा है, जिसमें वो एक चीज कहते हैं कि वो छह चीजें हमें बताते हैं कि इन छह चीजों में हम ध्यान देंगे तो आप कृष्ण नाम में कृष्ण को अनुभव करोगे, या ये जो हरि नाम है उसके प्रति आपका जो तीव्र अनुराग है वो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। तो सनातन गोस्वामी वहां एक श्लोक लिखते हैं जिसमें वो ये छह चीजें बताते हुए वो कहते हैं, मन संहरणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत्वम निर्वदो जप संपत्ति हेतवः, कि वास्तव में हरि नाम के प्रति दिव्य आसक्ति का उदय करना है। हाँ, तो हमें छह प्रैक्टिकल चीजों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, तभी क्या होता है वो मंत्र हमें रिजल्ट प्रदान करता है। तो वो कहते हैं, पहली चीज वो कहते हैं मन संहरणम, मन संहरणम का मतलब है कंट्रोलिंग द माइंड, मन को क्या करना, हमेशा वश में करने का प्रयास करना चाहिए हरि नाम के समय में। हाँ, क्योंकि हरि नाम साक्षात कृष्ण है जो बहुत अधिक दयालु होकर हमारे लिए इस भौतिक जगत में प्रकट हुए हैं, तो हम उसके प्रति जब अटेंटिव नहीं होते तो वास्तव में हम कृष्ण नाम का अनादर कर रहे हैं, और कृष्ण नाम का अनादर मतलब है कृष्ण का अनादर कर रहे हैं। हाँ, जैसे हम सुनते अटेंशन इज द सीड ऑफ लव, कि हम प्रेम पर तो काम नहीं कर सकते हैं लेकिन एक चीज पर हम काम कर सकते हैं, वो क्या है? अटेंटिव होना या अटेंशन बनाए रखना। हाँ, तो जब आप किसी से प्रेम करते हो तो स्वाभाविक रूप से क्या होते हो? आप उससे अटेंटिव होते हो। अरे वैसे ही है, या जिससे आप प्रेम करना चाहते हो तो उसके प्रति आप क्या हो जाओ? अटेंटिव हो जाओ उसके हर एक्टिविटीज से, उससे क्या अच्छा लगता है नहीं लगता है हर चीज से। जब आप अटेंटिव हो जाते हो तो आप न चाहते हुए भी आपका प्रेम उस ऑब्जेक्ट से जागृत हो जाएगा या बन जाएगा। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ये बहुत आवश्यक है कि जब हम कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं तो हमें अटेंटिव होना चाहिए, हमारा मन जहां जहां भागे। गीता में भगवान कहते हैं यतो यतो निश्चलति मन चंचल स्थिरम ततस्ततो नियमित आत्मनैव वशम नयेत, कि जहां जहां ये मन भाग रहा है फिर हे अर्जुन वापस उसको ले आओ। तो वैसे ही है, सनातन गोस्वामी ने पहली स्टेप बोली है मन संहरणम, कि अब हरि नाम का उच्चारण करते हो तो प्रयास करो हर समय इस चीज पर ध्यान लगाओ कि किस प्रकार से अटेंटिव हो जाओ। जैसे जैसे मन कृष्ण नाम के अलावा भागेगा वैसे वैसे क्या करो? वापस ले आओ। मन में एक स्विच भी होता है, वो स्टॉप हो जाता है, मतलब हरि नाम चलता रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मतलब वो मशीन रोटेट हो रहा है लेकिन वो अंदर नहीं जा रहा है। जैसे आप रेलवे के पास जिनके घर होते हैं नया नया, तो उनको रेलवे की आवाज सुनाई नहीं देती है कि नहीं? तो हमारी स्थिति वैसे ही हो जाती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये साउंड वाइब्रेशन जा रहा है लेकिन क्या हो गया है? सुनाई नहीं दे रहे। जैसे कई गृहस्थाज हैं जो ऑफिस से थके भरे आते हैं, टेंशन से बहुत सारा वर्कलोड होता है, घर आते हैं तो पत्नी इंतजार ही करती रहती है, कुछ ना कुछ लेके आएगी, मैगजीन लेके आएगी, दिन भर की बातें सुनाना चाहेगी। अब ये टेंशन में रहता है, ये कुछ तो अपना काम कुछ तो पढ़ते रहेगा टेबल या चेयर में बैठकर, वो जितना भी बोलेगी बोलेगी तो अंदर जाता नहीं है, है ना? शुरुआत के दिनों में जाता है लेकिन कुछ दिनों के बाद वो स्विच ऑफ हो जाता है, माइंड में एक स्विच होता है, वो सुनाई नहीं देता, वो चिल्लाती रहती है। तब कुछ लंबा जो लाउड साउंड वाइब्रेशन होता है तब कुछ अंदर घुसता है। तो शास्त्र कहते हैं कि माइंड में एक स्विच है, मैं भूल गया क्या नाम है उस स्विच का, वो ऑफ हो जाता है। तो जब करते समय में भी जो बाकी कृष्ण नाम के अलावा जो चीजें हैं जिसमें मन भाग रहा है, जो चीजें हरि नाम के जब जब करते तभी ज्यादा चीजें सुनाई देती है हमें, मोबाइल रिंग साइलेंट भी हो तो भी सुनाई देगा और बहुत सारी चीजें, तो उस समय उसको ऑफ कर देना चाहिए एक उस स्विच को। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हमें अटेंटिव होना चाहिए कि कृष्ण साक्षात कृष्ण है। जैसे अकबर के जीवन में हम उदाहरण सुनते हैं कि अकबर बहुत सारा उन्होंने युद्ध आदि किया और बहुत बिजी जीवन बिताया कुछ लंबे समय तक, तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी मुझे ना मस्जिद में जाना है, कुरान वगैरह पढ़ना है, प्रार्थना आदि करनी है। तो ऐसे अकबर गए मस्जिद में कुरान को लेकर और बड़े गंभीरता से पढ़ने लगे और एक गार्ड को दरवाजे में रखा कि कोई अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन अकबर पढ़ते पढ़ते देखा कि एक युवती एक लड़की बार बार ऊपर जा रही नीचे आ रही और पागल की तरह घूम रही है। थोड़ा सा उन्होंने देखा और अपना फिर से लग गए। वो गार्ड उस मस्जिद के दरवाजे में था, ये जो युवती है ये पागल हो गई थी, ये दौड़ते हुए अचानक आ गई, गार्ड को भी पता नहीं, और वो सर्च कर रही थी किसी चीज को ढूंढ रही थी, और ढूंढते ढूंढते उसने देखा भी नहीं कि अकबर बैठा है कुरान को लेकर, उसके ऊपर से चल गई, अकबर भी गिर गया, कुरान भी गिर गया, सब अस्त व्यस्त हो गया। तब गार्ड ये चिल्लाया गार्ड 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 इधर आओ इसको पकड़ो। गार्ड ने पकड़ा, उस लड़की को लाया और कहा कौन सी दुनिया में हो, क्या ढूंढ रही हो, तुम्हें पता नहीं इतना महान अपराध किया है तुमने, मैं कुरान पढ़ रहा था, कुरान के ऊपर से गई हो, मेरे ऊपर से गई हो, तुम्हें तो मृत्युदंड देंगे, एक बड़ा रस्सी तुम्हारे गले में बांधूंगा और धीरे धीरे तुम मरोगी। ये बहुत गुस्से में आकर ना ये बोल रहा था अकबर। तो उन्होंने सब सुना, तो उन्होंने कहा मेरा थोड़ा सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। तो पहले तो अकबर ने कहा था कि किसको ढूंढ रहे थे, तो इन्होंने कहा कि मुझे पता चला था कि मेरा जो प्रेमी है, लवर है, वो इस टाउन में आया है, और उसको मिलने के लिए, उसको ढूंढने के लिए मैं पागल के बातें क्या हो रही थी, यहां वहां घूम रही थी, और बिल्कुल आपने आपको भूल गई थी। तो उन्होंने कहा, उस लड़की ने कहा कि इस भौतिक जगत के प्रेमी के प्रति इतना कोई आसक्त हो सकता है, ऑब्जर्व हो सकता है, तुम तो परम भगवान के प्रति। तो इन्होंने कहा मैं तो इसके लिए पागल हो गए थे और मैं बिल्कुल भूल गए थे। उन्होंने पूछा तुम क्या कर रहे थे? अकबर ने कहा मैं तो कुरान पढ़ रहा था। उन्होंने तुम प्रिटेंड कर रहे थे, क्या कहेंगे उसको, दिखावा कर रहे थे, तुम वास्तव में कुछ पढ़ रहे थे, कुरान आदि नहीं पढ़ रहे थे, उसमें मग्न नहीं हो गए थे। हाँ, जब उसको ये लगा, उसकी जो बात है कि वास्तव में तुम पढ़ रहे होते, हाँ, या उसमें उस नाम का उच्चारण आदि कर रहे होते, हाँ, जो परम प्रेमी है, हाँ, तुम कितने मग्न हो जाना चाहिए तुम्हें, मैं तो भौतिक प्रेमी के लिए पागल हो उठी थी। हाँ, तो उस प्रकार से जब उन्होंने ये सुना अकबर ने, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर से गलती मत करो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कितना ये होना चाहिए, अटेंशन हमें देना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी यहाँ वर्णन करते हैं इस पहले चीज को, मन संहरणम, कि हरि नाम के समय, हरि नाम के उच्चारण में हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मन का ये स्वभाव है चंचलता, भागना, क्योंकि मन का वृत्ति है कि वो एक समय एक ही कार्य में मग्न रह सकता है, तो उसको हमें लगाना होगा फोर्सफुली। और वास्तव में ये जो असावधानी है, इन अटेंटिवनेस है चैंटिंग में, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि यही सारे अपराधों की क्या है, जड़ है, इसके कारण ही सारे अपराध क्या करते हैं, बढ़ते हैं या उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत सरल चीजें कहते हैं। प्रभुपाद ने कहा, किसी ने पूछा कि कैसे मन को कंट्रोल किया जाए, प्रभुपाद कहते व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड, यू हैव टू चैंट एंड हियर, दैट्स ऑल, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ माइंड। तो प्रभुपाद ने कहा क्या मन को कंट्रोल करना क्या है, आपको क्या करना है, केवल अटेंटिवली हियर एंड चैंट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सनातन गोस्वामी दूसरा कहते मन संहरणम शौचम, शौचम का मतलब है क्लीनलीनेस, सफाई या प्योरिटी भी कह सकते हैं उसको। तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब क्लीनलीनेस नहीं है तो मन इजिली भागने लगता है, क्योंकि वो एनवायरमेंट भी होना चाहिए, एक्सटर्नल क्लीनलीनेस, बाहरी शौचम और आंतरिक शौचम, आंतरिक शुद्धता और बाहरी शुद्धता दोनों आवश्यक है। जब ये शुद्धता को हम मेंटेन नहीं करते हैं, क्लीनलीनेस को, तो हमारा मन की चंचलता और बढ़ती है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है भक्तों को भी, जनरली भक्त आलसी होते हैं सफाई में। जैसे प्रभुपाद एक बार मायापुर में थे, तो वह ब्रह्मचारी आश्रम के पास से गुजरे, तो प्रभुपाद ने ब्रह्मचर्य आश्रम का दरवाजा थोड़ा खोला और अंदर झांका, देखा इतनी गंदगी है, प्रभुपाद ने कहा ब्रह्मचारी मीन्स अनक्लीन। तो इसका मतलब नहीं, कलयुग का एक लक्षण है ब्रह्मचारी गंदे रहेंगे, भागवत में वर्णन आया। तो जनरली डिवोटीज क्या है, वो सोचते कि नहीं, हम भक्ति कर रहे तो बाकी चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो क्लीनलीनेस बहुत आवश्यक है। तो जो वातावरण है, या चाहे हमारा घर है या पर्सनल क्लीनलीनेस है, इस सब का प्रभाव हमारे चैंटिंग में पड़ता है। इवन जो प्रसादम है, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु अंति लीला में कहते हैं, विषयर अन्न खाइल मलिन हयमान, मलिन मन हैल न है कृष्ण रसमरान। तो ये भी एक क्लीनलीनेस है, विषयरा अन्न खाइल मलिन है मन। अब इधर उधर का खाने के लिए भ्रमण करते हो, ये जीवा तार मध्य जीवा आति, क्या है उस श्लोक? लोभमय सुधुरमति, किसी और इंद्रियों का वर्णन नहीं किया है वहां, भक्तिविनोद ठाकुर ने जीवा का बोला है। तो हमारी जीवा इतनी छोटी सी है, पता नहीं कितने इंच की है, लेकिन कितने किलोमीटर दूर हमें ले जाती है, पकौड़े गोल गप्पे और पता नहीं और क्या क्या खाने के लिए दूर दूर ले जाती है। तो इस प्रकार से विषयर अन्न खाइल मलिन है मन, कृष्ण प्रसाद के अलावा हम चीजें खाते हैं अनऑफर्ड तो हमारा मन मलिन होने लगता है। मलिन मन हाइला नहे कृष्णेर स्मरण, जब मन मलिन हो जाएगा तो कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। तो इसलिए यह भी एक क्लीनलीनेस का एस्पेक्ट है कि हम क्या करें, कृष्ण प्रसाद को ही ग्रहण करें। क्यों हम अपना मन वैसे ही इतना गंदा है, भक्ति में आने के बाद और भी थोड़ा सा आनंद लेते हैं गंदा, क्योंकि ज्यादा सफाई अच्छी नहीं लगती, थोड़े सोचते हैं चलो और थोड़ा गंदा करते हैं। जैसे जो पिग है सुअर, साफ हो जाए अच्छे पानी में बारिश में तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो गटर देखेगा कि कहाँ नाला और वो सब पड़ा है, जाएगा उसमें। तो हमें उसके भांति नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक कथा आती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं लेकिन मैं ट्राई करता हूँ बताने का। एक साधु थे, उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया, राजा ने बहुत उनका आदर सम्मान किया और उनको अपने घर ले आया और राजा के महल में रहने लगा। हाँ, तो राजा का जहाँ रूम था, राजा रानी वहां निवास करते थे और साधु भी उनके पास वाले रूम में निवास करते थे। तो साधु निरंतर सेवा में लगा रहता था और बहुत पवित्र हृदय का था। और उस समय राजा के वहां जो भी भोजन इधर उधर का बनाया था वो उस साधु ने ग्रहण किया, खाया। और एक दिन क्या हुआ कि सुबह के समय राजा और रानी स्नान करके, जो भी बाथरूम था उन्होंने यूज किया और उनका स्नान हुआ, तो साधु स्नान करने के लिए गया तो रानी ने अपने हीरे जवाहरात उस बाथरूम में छोड़ के चले गए थे, भूल गए थे। तो साधु जब स्नान करने गया तो स्नान करते करते उसके दिमाग बहुत फास्ट काम करने लगा, क्या चीज को देखकर, वो सारे उस रानी के गले के सारे आभूषण आदि, उसके हृदय में इतना विचार आया। उन्होंने क्या किया, अपने धोती की एक चीज में वो सारे जवाहरात वगैरह बांधे और देखा कोई मुझे देख नहीं रहा है, वो उसे भागने लगा, दूर दूर भागने लगा। और भागते भागते इतना थक गया कि उसको वॉमिटिंग वगैरह सब होने लगी। और जब सारा गंध बाहर निकल के आया तब वो सोचने लगा मैंने किया क्या। हाँ, उसने सोचा कि मैं तो ये चीज तो बिल्कुल इसके समान है, पर द्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरों का जो द्रव्य है धन आदि है वो मिट्टी आदि के समान है। मेरे विचार में, मेरे दिमाग में ये विचार आए कैसे कि मैं ये चीजों को चुराऊं। तब उसने जब ये सारी गंदगी उसके मुंह से सब निकल गए थे तब उसने ठीक से विचार करके सोचा कि मैंने कल क्या किया था, अनऑफर्ड चीजें वगैरह खाई थी, जिलेबी, और बहुत सारा वर्णन किया है कि कहाँ किसके हाथ से खाया। क्योंकि जब आप विषयी व्यक्ति के हाथ से खाते हो तो उस व्यक्ति की जो चेतना है उसमें एंटर करती है और उस चेतना फिर हमारे ऊपर प्रभाव डालती है और फिर हम कार्यरत होते हैं। हाँ, इसलिए घर में स्त्री का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे घर को कृष्ण भावना देने के लिए स्त्री का क्या है, बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि वो क्या करती है, सबके लिए कृष्ण प्रसाद बनाती है। इसलिए महाप्रभु ने कहा विषयर अन्न खाइल मलिन है मन, गंदा हो जाएगा हमारा मन जब हम कृष्ण प्रसाद के अलावा चीजों को खाते हैं, उपभोग करते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हरिनाम या चांटिंग के प्रति हम, वो प्रभाव चांटिंग में पड़ता है जब हम अपना क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करते। क्लीनलीनेस ये भी है कि पूरे दिन में आपके एक्टिविटीज क्या हैं, किस प्रकार से आप एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हो, कितना क्रोधित हो रहे हो, किस प्रकार के थॉट्स से आप गुजर रहे हो, विचारों के प्रभावों से, कौन सा लिटरेचर पढ़ रहे हो, कितने चीजों को आप
नेट या फिर मोबाइल या कितने लोगों से अलग अलग चीजें सुन रहे हो, कितना न्यूज़पेपर के लिए टाइम दे रहे हो, ये सब क्लीनलीनेस का ही मैटर है जिसका प्रभाव हमारी चेतना में पड़ता है। और हरि नाम लेना हमारे लिए क्या होता है, असंभव हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है एक्सटर्नल क्लीनलीनेस। और इंटरनल क्लीनलीनेस क्या है, एशाम त्वंतगतम पापम जनानाम, एशाम त्वंतगतम पापम जनानाम दृढ़ व्रता। मुझे एग्जैक्टली श्लोक भूल गया शायद। तो कृष्ण कहते हैं कि जो एक प्रकार से पाप कार्यों से मुक्त हो गए हैं वो दृढ़ता के साथ मेरा भजन करते हैं। तो पाप कार्य क्या है, चार प्रकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, हाँ चार प्रकार के जो नियम है जिनको हमें पालन करने से एक प्रकार से आंतरिक शुद्धता हमारी बढ़ती है। और डेली हर रोज प्रिस्क्राइब नंबर राउंड्स हैं उनको हमें करना चाहिए। और हर रोज प्रयास करना चाहिए कि गुरु और वैष्णवों के आदेशों को हम सर्व करें, शास्त्रों को पढ़ें, हाँ नित्यम वैष्णवों से हाँ श्रवण करें हम कृष्ण के बारे में। तो इससे शौचम बढ़ता है, शुद्धता प्यूरिटी बढ़ती है। और ये बढ़ने से क्या होता है, हरि नाम भी हमारा बढ़ने लगता है, हरि नाम के प्रति भी हमारा अनुराग बढ़ता है। सनातन गोस्वामी आगे कहते हैं, मौनम मन संवरणम शौचम, तीसरा है मौनम। मौनम का मतलब ही है, मौनम का मतलब यह नहीं है कि ओठों में ताला लगाओ, जैसे प्रभुपाद हमारे महाराज जो उदाहरण बताते हैं, प्रभुपाद के साथ वो कुरुक्षेत्र गए थे तो वह कई सारे मौनी बाबा को वो देखा। एक मौनी बाबा था, कई सालों से यहाँ लॉक लगाया हुआ था, और लेकिन जो भी चाहिए वगैरह सब वो लिख के पेन पेपर से लिखता था और सब अपने रेगुलर एक्टिविटीज में मग्न था। तो यह मौनम नहीं है, मौनम का मतलब है रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रजल्पा से क्या करना, दूर रहना, अनफेवरेबल टॉक। जो कृष्ण वैष्णव और कृष्ण सेवा से संबंधित वार्ताएं नहीं है उनका उच्चारण हमारे जीवा से नहीं होना चाहिए। और प्रजल्पा मतलब कृष्ण के अलावा जो बातें हैं, और प्रजल्पा का दूसरा सब्जेक्ट यह भी है निंदा। क्या निंदा, वैष्णव आदि की निंदा। तो ये निंदा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन जपा, डिवोटीज कहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, बैड इफेक्ट हमारे जपा पर होता है वो किससे होता है, निंदा के द्वारा। जब हम हाँ वैष्णवों की भक्तों की हाँ आदि की निंदा में रत होते हैं, हाँ निंदा में अपने आप को लगाते हैं तो उसका बहुत ही भयावह प्रभाव हम हमारे चैंटिंग में पड़ता है। इसलिए मौनम का असली मतलब है कि अधिक से अधिक हमारी जो जीवा है भक्तों का गुणगान करने में लगे, कृष्ण का नाम रूप गुण लीला धाम आदि का वर्णन करने के लगे। जितना अधिक ये जीवा हाँ इसमें लगेगी, आध्यात्मिक मैटर्स का वाइब्रेट करने में लगेगी, उतना ही अधिक हम प्रजल्पा से अपने आप बचेंगे। हमें कोई और अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जगत में सबसे कठिन कार्य कोई है तो एक ही है, कृष्ण का वर्णन करना, कृष्ण का गुणगान करना, कृष्ण के भक्तों का गुणगान करना। इवन इस्कॉन डिवोटीज में भी देखा गया है कि किसी से आप मिलते हैं तो आप किसी से जाते और आप कहो कि प्रभु जी कृष्ण के बारे में बताओ कुछ, तो वो सर में हाथ लगाएगा, कृष्ण के बारे में क्या बताओ आपको, टफ है, सबसे कठिन है कृष्ण का गुणगान करना इस जगत में। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम निरंतर प्रयास करें कि अधिक से अधिक हम कृष्ण का गुणगान कर सके। और मौनम का यह मतलब ही है कि हरि नाम का जब हम उच्चारण करते हैं तो हरि नाम के अलावा किसी और बातों में हम ना लगे, हरि नाम करते समय केवल हरि नाम करें, बाकी और चर्चाएं, हरि नाम भी हो रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है, चर्चा भी हो रही है। जपा ऑक जपा टॉक, एक बुक ही लिखा है सत्स्वरूप महाराज ने, वॉकिंग के लिए चलते भक्त और फिर जब भी हो रहा है कंप्लीट एक एक मन का नीचे आ रहा है 16 में से, और साथ साथ क्या हो रहा है, चर्चाएं भी हो रही है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने जब दीक्षा नहीं ली थी या दीक्षा के दीक्षा के बाद शायद लोकनाथ दास गोस्वामी ने उनको डांटा था इसी चीज के लिए। हाँ, क्योंकि दीक्षा से पहले लोकनाथ गोस्वामी ने कहा मैं तो तुम्हें तभी शिष्य स्वीकार करूंगा, मैं जानूंगा एक साल पहले कि आपस में एक दूसरे को हम जाने और मैं रेगुलर भक्ति में कार्यकलाप दूंगा कि इतनी माला आप चांट करो वगैरह वगैरह। हाँ, तो नरोत्तम दास ठाकुर को उन्होंने सारी प्रैक्टिस समझाई और नरोत्तम दास ठाकुर वैसे करने लगे। तो एक दिन लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर के साथ जप कर रहे थे, जप करते समय एक व्यक्ति आया और उनको डिस्टर्ब करते हुए उनसे पानी मांगने लगा। तो लोकनाथ गोस्वामी फुल्ली ऑब्जर्व थे हरिनाम का उच्चारण करने में, नरोत्तम दास ठाकुर थोड़े से ढीले हो गए थे। उन्होंने कहा अच्छा इनको पानी पिलाता हूँ फिर बाद में जप करता हूँ। तो अपना जप छोड़ दिया और वो गए पानी ढूंढने, उनको पानी वगैरह पिला के आए और लोकनाथ दास गोस्वामी के साथ बैठे और लोकनाथ गोस्वामी ने बाद में उनको डांटा कि आप यू आर नॉट फिट फॉर चैंटिंग, कि आप जप करने के लिए क्या नहीं हो, फिट नहीं हो, या एक प्रकार से योग्य नहीं हो। क्योंकि वास्तव में ये जो चैंटिंग है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना है, ये कोई सामान्य कार्यकलाप नहीं है, ये सर्वोत्कृष्ट एक्टिविटी है कृष्ण की सेवा के लिए। क्योंकि जब आप स्वयं जप करते हो तो वो कृष्ण की पर्सनल सेवा है, और जब हम सामूहिक नाम संकीर्तन करते हैं तो वो सामूहिक कृष्ण की सेवा है। उन्होंने कहा कि तुमने कृष्ण की सेवा को, राधा कृष्ण की सेवा को त्याग दिया। उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी को डांटा इस चीज के लिए, लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को डांटा। तो इस प्रकार से मौनम का मतलब है कि हरि नाम के समय हम क्या करें, हरि नाम ही करें। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी हमें इन चीजों को प्रदान कर रहे हैं। और चौथी चीज सनातन गोस्वामी कहते हैं मंत्रार्थ चिंतनम, कि जो मंत्र है उसके मीनिंग का क्या करना, चिंतन करना। चिंतन करने का मतलब यह है कि सही एटीट्यूड से हमें चैंटिंग करना। चिंतन करने का मतलब यह नहीं कि राधा कृष्ण की कुछ लीलाओं को फोर्सफुली हम सोचते रहे, नीडेड नहीं है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि सिंपल मीनिंग हमें स्मरण रहना चाहिए, जैसे प्रभुपाद ने हमें सिखाया है हरे कृष्ण महामंत्र का सरल सर्वोत्तम मीनिंग क्या है, कि हे श्रीमती राधिका आप मुझे क्या करो, कृष्ण की सेवा में नियुक्त करो। और उसका मतलब ये कि कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। इस एटीट्यूड के साथ, इस विनम्रता की भावना के साथ हमें ये हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। और उसी को ही चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा स्तकम में कहा है, अय नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवामुदो कृपया तव पाद पंकजम स्थित दुली सदृशम विचिंतया, कि हे नंद तनुज कृष्ण मैं तो इस भवसागर में गिरा हूं। वास्तव में ये भावना को हृदय में धारण करते हुए जब हरि नाम का उच्चारण करते हैं तो हम देखते हैं कि हरि नाम टोटली डिफरेंट हो जाता है। जब इस एटीट्यूड को, वास्तव में मैं गिर गया हूं इस भौतिक जगत में और मुझे कृष्ण के चरण कमलों की आवश्यकता है। चैतन्य महाप्रभु जब वल्लभाचार्य जगन्नाथपुरी गए थे और उन्होंने रथ यात्रा वगैरह अटेंड किया, और रथ यात्रा में देखा चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के नृत्य और सौंदर्य को देखकर वल्लभाचार्य बहुत आकृष्ट हुए और वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और वो कहते हैं रथया यात्रांतरे बट्ट जाए महाप्रभु रस्ताने प्रभु चरणे किछु कैल निवेदने। तो रथ यात्रा खत्म हुई, चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए वल्लभाचार्य वो गए और उनके पास जाकर निवेदन करते हैं, भागवतेर टीका किछु करियाछि लिखान आपने महाप्रभु जदे करे न श्रवण। उन्होंने कहा कि मैंने अभी अभी श्रीमद् भागवतम पर टीका लिखी है, हे महाप्रभु आप क्या करो इसको सुनो। प्रभु कहे भागवत, प्रभु कहे भागवतार्थ बुझिते न पारे भागवतार्थ सुनिते आमी नाही अधिकारी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरी तो बहुत दुर्दशा हो रही है आजकल, मैं तो भागवत का अर्थ को बुझते ना पा रही, समझ नहीं पाता, और भागवत के अर्थ को टीका आदि को जानने के लिए सुनने के लिए मैं अधिकारी नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, क्वालिफाइड नहीं हूं। बसी कृष्ण नाम मात्र करे ये ग्रहणे संख्या नाम मोरन है रात्रि दिने। मैं तो एक ही कार्य में लगा हूं, बैठकर क्या करता हो,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मैं तो संख्या पूर्वक नाम रात्रि दिन ले रहा हूं, फिर भी मेरी संख्या पूर्ति नहीं हो रही है। चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य को कहते हैं, तुझे भी नाम के बारे में चैतन्य महाप्रभु से ये चीज सुनी वल्लभाचार्य ने, तो वल्लभाचार्य कहते हैं, भट्ट कहे कृष्ण नामेर अर्थ व्याख्याने विस्तार करिया चिता कर श्रवणे। उन्होंने कहा, मैंने अपनी टीका में ना कृष्ण नाम के अलग अलग मीनिंग भी लिखे हैं, हाँ इसके अलग अलग अर्थ आदि हैं, और आप इसको आप सुनिए पढ़िए। तो महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे कृष्ण नामेर बहु अर्थ नामाने श्याम सुंदर यशोदानंदर यही मात्र जानी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ना, इसके बहुत अर्थ तो नहीं जानता, हाँ और मैं और जानना भी नहीं चाहता, मुझे एक ही अर्थ पता है कि ये जो कृष्ण है ये यशोदा माता के क्या है, पुत्र है, श्याम सुंदर कृष्ण है, बस यही मुझे पता, यही इसका अर्थ है, यही अर्थ आमे मात्र जानी है निर्धार आर सर्वार्थे मोरा नाही अधिकार। महाप्रभु ने कहा, दूसरे अर्थ आदि जानने के लिए मुझे कोई अधिकार नहीं है, मैं तो हरि नाम का यही एक में अर्थ जानता हूं कि कृष्ण क्या है, श्याम सुंदर है, त्रिभंग ललित है और यशोदा माता के पुत्र है, यशोदा नंदन है। तो इस प्रकार से वास्तव में चैतन्य महाप्रभु हमें ये सिखाते हैं कि सिंपल सरल रूप से जो हरि नाम का मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र के अर्थ का चिंतन करना जो श्रील प्रभुपाल ने हमें दिया है, हाँ कि कृष्ण प्लीज आप मुझे सेवा में एंगेज करो या कृपया आप मुझे स्वीकार कीजिए, ये दीनता की भावना, आप किसी विपदा में पड़े हो, कोई व्यक्ति आपके सामने है वो आपे बचा सकता है, तो आप रोते हुए कहते हो प्लीज आप मुझे स्वीकार करो, आश्रय दो, इस भावना को धारण करते हुए हरि नाम लेना चाहिए। और उसी भावना को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा स्तकम में आई नंद तनुज किंकरम इस भावना को लाने के लिए उस श्लोक का वर्णन किया है। हाँ, तो इस प्रकार से सरल अर्थ का ये करते हुए व्यक्ति को हरि नाम, हाँ इसलिए बहुत आवश्यक है मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र के अर्थ का चिंतन या उस एटीट्यूड को लाते हुए हरि नाम का उच्चारण करें। प्रभुपाद उसी मूड को बताने के लिए कहते थे कि एक जो बालक है अपने माता पिता से दूर, हाँ या गुम हो गया है, तो वो बालक बच्चा जब रोता है अपनी माँ के लिए, हाँ उसी भावना का उसका जो रोना है अपने माँ से दूर होने के बाद जो रोना है, उसी प्रकार का जो क्राय हरि नाम का उच्चारण करते हुए हमारा होना चाहिए, उसी प्रकार का मूड हमें लाना चाहिए। पांचवी चीज सनातन गोस्वामी कहते अव्यग्रत्वम, अव्यग्रत्वम का मतलब है एग्जिबिटिंग पीसफुलनेस, द शांत शांत, मतलब अभी हम जप करने बैठते हैं, बैठते ये सोचते हैं 7 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि मुझे 7 बजे ब्रेकफास्ट करना है, तो उसके लिए रशिंग ना, ये जो रशिंग को क्या कहेंगे, जो भागने वाला जप है, ये हमें कोई रिजल्ट नहीं देने वाला कि मुझे अभी 9 बजे प्रसाद लेना है तो तब तक खत्म करना है मुझे, हम तो खत्म करने में लगे हैं, हाँ सब कुछ खत्म हो जाए, हरि नाम खत्म हो जाए, भागवत खत्म हो जाएगा, लेकिन भागवत खत्म करना है, आप खत्म हो जाओगे लेकिन भागवत खत्म नहीं होगा ना हरि नाम खत्म होगा, तो वो एटीट्यूड सही नहीं है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे भावना से, इस एटीट्यूड से, रशिंग भागते हुए भावना से जब करना, उससे प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, आपके नंबर ऑफ राउंड्स टाइम पर खत्म हो जाएंगे, आपका साधना चार्ट में सब कुछ आ जाएगा, है ना कि हाँ इतने इतने समय हमने खत्म किए हैं। या फिर वो कहते हैं कि ऐसे जब हम जल्दीबाजी करते हैं तो एक प्रकार से एक हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण को हटा रहे हैं, भागो जल्दी, जैसे कोई गेस्ट आता है जिससे हमारा रुचि नहीं इतना ना, तो हम ज्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते कि कब भागेगा यहाँ से। मतलब मैं अटेंड आपके लिए समय भी दे रहा हूं, लेकिन किस एटीट्यूड से कि भागो अभी बहुत हो गया, तो वैसे ही हमारा हरि नाम। तो जब श्यामानंद प्रभु ओरिसा में प्रचार करते थे तो उन्होंने कई राजाओं को ओरिसा में भक्त बनाया था। तो उस समय एक राजा थे जिनका नाम था गोविंद दास। तो उस राजा की जो प्रजा थी, जो सारी प्रजा, सबके लिए वो नियम था 64 राउंड्स चांट करना। जो भी उनकी प्रजा है वो हरेक के लिए नियम था क्या था, 64 मालाओं का जप करना, और नहीं जो करेगा उसको उससे बाहर भगा देते थे, अपने राज्य से बाहर या दंड देते थे। तो वहां तो किसान भी होते थे और कई प्रकार के लोग, तो वो इस भय से कि कब 64 राउंड खत्म होगा। जैसे आप 16 के लिए बार बार देखते हैं ना, अपने क्या कहते हैं उसको काउंटर, हाँ काउंटिंग बीट्स को देखते कितने हो गए कितने हो गए, फिर दूसरे के भी देखते हैं वो आगे तो नहीं बढ़ गया मुझसे तो हम भी अपना स्पीड बढ़ाते भगाते यही है। तो वहां उन्होंने सारे अपने सारे प्रजा को ऐसे डाला था, जोर लगाया था, जेल में भेज देंगे, बाहर भगा देंगे। तो ऐसा वो लोग बेचारे कैसे तो हरिनाम कर लेते थे, जस्ट इसलिए जब करते थे कि काउंटर नीचे खिसखिसता जाए। हाँ जब क्यों कर रहे हैं हम, काउंटर ऊपर क्यों है, नीचे जाए फास्ट। तो उस प्रकार से वो कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान या नाम के प्रति बिल्कुल भी जो प्रीति है या अनुराग है या रुचि है वो होगा नहीं, और वो हरि नाम हमें हमेशा बोझ लगेगा। क्या लगेगा, बोझ, बोझा है, इसलिए तो हम जल्दी सर से नीचे रखना चाहते हैं ना। कोई बोझ आप कितना लंबा ढोगे, अब सोचोगे अब भी जल्दी कौन सा भी जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना हम नीचे रखना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से सनातन गोस्वामी ने कहा कि ये जो भावना है अव्यग्रत्व, मतलब बिल्कुल पूरे अटेंटिव शांति के साथ हमें हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। हाँ ये टाइम कृष्ण के लिए वास्तव में है ना, टाइम कृष्ण का है और उनके लिए ये टाइम, कालोस्मी लोक क्षय कृत प्रबुद्ध, भगवान के लिए मैं तो टाइम हूँ। और छठी चीज है निर्वधो, हाँ शोइंग इगरनेस फॉर चांटिंग। निर्वधो का मतलब है कि लवल्यम, हमेशा लवल्यम, लवल्यम को क्या कहेंगे दूसरा शब्द, इगरनेस को क्या कहते हैं दूसरा शब्द, लालसा, हमेशा लालायित रहना हरि नाम का उच्चारण करने के लिए। हाँ इसलिए जब हम हमेशा हरि नाम का उच्चारण करने के लिए लालायित रहना चाहिए। अरे लवल्यम आएगा कैसे, जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते, करोड़ करोड़ जन्म की सुकृति से भी ये लवल्यम प्राप्त नहीं होता। जिस डिवोटी के हृदय में हरि नाम का उच्चारण करने के लिए लवल्य है, उसके एसोसिएशन से हमें क्या होता है, वो लवल्य हमारे हृदय में आता है। हाँ जैसे उस वेश्या हरिदास ठाकुर के पास गई, थोड़ा सा संग उसका हुआ, हाँ वो इतनी शुद्ध भक्त बनी कि सारे आसपास के महान महान वैष्णव उस वेश्या का दर्शन करने के लिए, उसका संग लाभ करने के लिए आते थे। इतना अनुराग उस वेश्या का हुआ था, बल्कि उसका पापमय जीवन, पूर्व पापमय जीवन बहुत भयावह था, लेकिन एक ही गुण था क्या, हरिदास ठाकुर का लव मात्र साधु संग, हरिदास ठाकुर का थोड़ा सा संग उसको हुआ था। संग क्या, कि हरिदास ठाकुर के संग में उसने हरि नाम को सुना था। हाँ हरिदास ठाकुर वह वर्ण उच्चारण कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब उनके एसोसिएशन में ये वेश्या आई और ये भी क्या करने लगी, इसके मुंह से भी हरि नाम वाइब्रेट होने लगा, हाँ तो नेचुरली फिर वो लवल्य इसके हृदय में जागृत हुआ, हाँ हरि नाम के प्रति। तो हरि नाम के प्रति लवल्य जागृत करने के लिए हमें हरि नाम की महिमा पढ़नी चाहिए, हाँ हरि नाम की महिमा को डिस्कस करना चाहिए, और भक्तों के संग में हरि नाम का जप करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त के समय में, हाँ भक्तों के नजदीक संग में बैठ कर। तो उससे क्या होगा कि हमारा मन भागता है, वो दूर ले जाता है, हमारे अंदर लालसा है नहीं है, लेकिन जब हम भक्तों के संग में, और विशेष रूप से शास्त्र कहते हैं कि तुलसी महारानी के निकट बैठने मात्र से हरि नाम के प्रति लवल्य जागृत होता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे हरिनाम निकलते जा रहा है हमारे मुख से। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी इन छह चीजों को हमें प्रदान करते हैं हरि भक्ति विलास में, कि इन चीजों पर हम यदि कार्य करेंगे, सावधानी रखेंगे, तो फिर हमारा जो नाम भगवत नाम के प्रति जो आसक्ति है वो निश्चित रूप से वृद्धि होगा। हाँ, निश्चित रूप से, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, सनातन गोस्वामी आगे भी और कई श्लोकों में इस हरि नाम की महिमा को और अलग अलग चीजों को वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से ये अपॉर्चुनिटी है गुरु और कृष्ण की कृपा से। हमारी योग्यता से हमें हरि नाम नहीं मिला है। हाँ, केवल गुरु या वैष्णव श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्य ने इच्छा की कि यह हरि नाम सर्वसामान्य जीवन तक जाए, और उस इच्छा को पालन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने योजना बनाई। हाँ, सब जगह प्रभुपाद के माध्यम से हरि नाम पहुंचाया। तो ये हमारे लिए प्रिविलेज है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें कृतज्ञ रहना चाहिए हमेशा। हम अपने जीवन में चाहे जहां मर्जी पहुंचे, जिस किसी स्थिति में क्यों ना हो हम, लेकिन फिर भी हम हमेशा ऋणी रहे कि गुरु और श्रील प्रभुपाद की कृपा से यह हरि नाम हमें प्राप्त हुआ है। जो धन जो कृष्ण अपने स्टोर हाउस में लॉक करके रखते हैं, वो धन आपके हाथ में दिया है, तो उसको हमें कितना अधिक गंभीरता से जतन करना चाहिए। गंभीरता से जतन को क्या कहेंगे, केयरफुल होना चाहिए। तो इसलिए यह अच्छा मौका है। और जैसे एकादशी आदि हर 15 दिन में आता है, तो जैसे हमने कई अलग अलग भक्तों के नाम व्रत को डिस्कस किया है, तब अपने पर्सनल जीवन में भी हरि नाम का उच्चारण करने के लिए पर्सनल नाम व्रत हम ले सकते हैं, है ना, नीडेड नहीं है। और आचार्य शास्त्र कहते हैं कि अपनी साधना हमें लाउड सबको बताते नहीं रहना चाहिए, हमें इतना ये कर रहा हूँ, इतने राउंड्स कर रहा हूँ या इतनी चीजें कर रहा हूँ। हाँ, तो ये नाम व्रत को हमें पर्सनली लेना चाहिए एकादशी आदि में, भक्तों के संग में अधिक से अधिक हरि नाम करें। उससे क्या होगा कि हमारा हरि नाम के प्रति स्वाभाविक आकर्षण बढ़ेगा, और ये मूड हमेशा रहना चाहिए। एकाकी आमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने, कि अकेले मुझ में शक्ति नहीं है, हे श्री गुरुदेव वैष्णव आप क्या करो, मुझे शक्ति प्रदान करो, और उसी के कारण मैं हरि नाम कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो ये इस भावना से हमें हरि नाम को स्वीकारना चाहिए। हरि नाम संकीर्तन के नामचार्य हरिदास ठाकुर के श्री श्री नेताय गौर सुंदर के श्रील प्रभुपाद के।